نستعين. سب سے پہلے خدا بند متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ خدا بند متعال نے ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ آپ دوستوں کی خدمت میں حالات حاضرہ کرنٹ افیئر کے سیشن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. ساتھ ساتھ تسلیت و تعزیت بھی عرض ہے آپ کی خدمت میں, اور تبریک و تہنیت بھی عرض ہے. جو حالات حاضرہ ہیں, آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جو امت مسلمہ کی صورتحال مکمل خطے میں, اور بالخصوص ویسٹ ایشیا, مغربی ایشیا میں جو مڈل ایسٹ کے نام سے زیادہ معروف ہے, اس خطے کے اندر جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے تمام ہی مسلمانوں کے دل غمزدہ ہیں. اور پچھلے ہفتے ہونے والے واقعے میں سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر غمگین ہیں, عزادار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تین روز قبل, چار روز قبل تقریباً بعد الصادق دو آپریشن کے جو غاصب صہیونی طاقت کے خلاف انقلاب اسلامی کی جانب سے کیا گیا, اس کی مناسبت سے تبریک و تہنیت بھی عرض ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں کو ڈھارس پہنچی, حوصلہ پہنچا, ایک خوشی کی لہر فلسطین کے یتیم اور شہدا کے ان بچوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹیں آئیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو ان میزائلوں کے تلے مختلف جگہ پہ جو دشمن کو چوٹ لگی اس سے جو دل شاداب ہوئے, اور پورے امت اسلامی کے اندر خوشی کی لہر بہر اس تلخ اور عزا کے ایام کے اندر پڑی. اس حوالے سے تبریک و تہنیت بھی عرض ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو سیشن ہم برگزار کر رکھے ہیں حالات حاضرہ کا سیشن, خداوند متعال کے اس توفیق پر بھی شکر گزار ہے کہ خداوند متعال نے ایک عبادت کی توفیق ہمیں اور آپ کو اس وقت کی ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ خود اہتمام کرنا, ڈسکس کرنا اپنے حالات حاضرہ کو اور ان موضوعات کو کہ جو ہمارے خطے میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے, یا جس کو ہم کہیں کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی تائید دین نے نہ کی ہو, بلکہ عیناً دینی کام ہے, واجبات میں سے ہے اور اسلام کے سیاسی واجبات میں سے. جیسے اسلام کے مختلف سیاسی واجبات ہیں, جیسے حج, حج اسلام کی ایک سیاسی عبادت ہے. یا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اعتکاف ایک سیاسی اعتکاف ہے, اکیلے آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے. جیسے آپ چاہیں کہ میں اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں اکیلا اور کوئی نہ ہو, بلکہ نہیں, آپ کو ایک جامع مسجد کا انتخاب کرنا ہوگا, آپ کو ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا جس کا عنوان جامع ضرور ہو, اگرچہ وہاں جمعہ نماز نہ بھی ہوتی ہو, جامع ضرور ہو, لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہو, یعنی سیاسی طور پہ اس کی اہمیت ہوگی. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اربعین ایک سیاسی عبادت ہے, پیاد ربیع اربعین. ایسی حالات حاضرہ کے بارے میں گفتگو کرنا, حالات حاضرہ کے حوالے سے انٹریکٹو سیشن کرنا اور اپنے زمانے کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اور ایک اہتمام کرنا مسلمانوں کے ان امور کے بارے میں جو امور پوری امت مسلمہ کو درپیش ہیں, یہ اس قدر یعنی ایک سیاسی واجب ہے اور اتنا اہمیت کے حامل واجب ہے کہ نبی اکرم فرماتے تھے جو بھی یہ کام نہیں کر رہا, نبی اکرم فرماتے تھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان باقی ہے, یعنی اس کا اسلام ابھی بھی باقی ہے جو اس طرح کا اہتمام نہیں کرتا. کیا فرماتے ہیں, من اصبح ولم يهتم بالامور المسلمين فليس بمسلم. ایک جگہ پہ آیا کہ فليس منا, وہ شخص جو مسلمانوں کے امور کے بارے میں اہتمام نہ کرے, یعنی صبح کرے اس کا آغاز ہو دن کا, لیکن وہ مسلمانوں کے امور کے بارے میں اہتمام نہ کرے, تو نبی اکرم فرماتے ہیں یہ شخص مسلمان نہیں ہے, میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے. بس یقیناً جو امر ہم بجا لا رہے ہیں, اسی لیے انشاءاللہ کہ ہم باوضو اس سیشن میں آئیں. جیسے فرش عزا کے اوپر آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ عبادت ہے, یہ ایک ایسا وظیفہ, ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعین کی ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے جس کی, اور انہوں نے تاکید کی ہے اس کے اوپر. ایسے ہی حالات حاضرہ کی بھی جو یہ محفلیں ہیں, مجالس ہیں, یہ بھی عبادت ہیں, اور حتمن اس کا اجر و ثواب سیاسی عبادات کے اجر و ثواب کی طرح ہیں, کہ جو ہمیشہ باقی عبادات سے, انفرادی عبادات سے بڑھ کے ہوتا ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی انفرادی نماز پڑھے تو اس کا ایک اجر ہے, اور کوئی اجتماعی طور پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا اجر, یعنی خداوند متعال کہتے ہیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے, जमात की नमाज का सवाब आप शुमार नहीं कर सकते, उसकी ताबीरात आई है मुख्तलिफ, लेकिन कहा कि नहीं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं आया कि आप शुमार नहीं कर सकते उसको। ये हैसियतें इज्तिमाई तौर पे अपने खित्ते के बारे में, अपने उमूर मुस्लिमी के बारे में बैठना कि जैसे ये इबादत हम इज्तिमाई तौर पे कर रहे हैं, चूंकि हमारा इंशाल्लाह ये इंटरेक्टिव सेशन है। इसका जो मौजू हमारे लिए करार पाया था इन इंटरेक्टिव सेशंस का, कि मैं शुक्रगुजार भी हूँ इस कमेटी का जनाब जैनब सलाम के नाम से, नामे गिरामी के से जो अनबन है, इस टीम का भी, कि जो हमेशा से ही मुख्तलिफ अनावीन के ऊपर इस तरह की मजालिस का, महफिलों का, सेशंस का एहतमाम करते हैं, और हालात हाजरा के हवाले से भी मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप लोगों ने बंदे हकीर को एक दफा इस मौजू के हवाले से बात करने की तौफीक आप लोगों के प्लेटफॉर्म के जरिए से हासिल हो रही है। हमने इसका जो मौजू खुद मेजबानों ने करार दिया था कि शिफ्ट इन द रूल्स ऑफ उम्मा और डाइसेक्टिंग एस्केलेटिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एनालाइजिंग द सब्जेक्टिव रोल ऑफ मुस्लिम नेशंस। ये बड़ा अच्छा जबरदस्त मौजू था कि जिससे हम, ये मौजू हमसे ही मुतालिक है, चूंकि जिस उनवान के तहत हम आ रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा का जो एक मौजूई किरदार है, और एक ऐसा किरदार है कि उम्मत मुस्लिमा, आप देखें कि सबसे बड़ी चीज, और डाइसेक्टिंग की जब हम बात करते हैं, ये एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमारे लिए तजिया और तहलील करना बहुत जरूरी है। जो भी हालात हाजरा हो रहे हैं, हवादिस रोज हैं, जो भी चीज पेश आ रही है, उसका तजिया और तहलील होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप जो है वो तजिया तहलील के लिए हमें चाहिए होता है कि हमारी सोर्स इंफॉर्मेशन की ठीक हो, हमारे पास एक जबरदस्त सोर्स हो इंफॉर्मेशन की, क्योंकि जिस चीज को तजिया और तहलील करना है, डाइसेक्ट करना है, एनालिसिस करना है जिस चीज का, वो खुद इंफॉर्मेशन हमारे लिए ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन ही ऑथेंटिक नहीं होगी तो हम कहते हैं कि तजिया और तहलील का फर्स्ट स्टेप ही एक तरीके से हम डाइवर्ट हो गए, हम अपने उस स्टेप के ऊपर नहीं है कि जिसको हमें एक्चुअली तय करना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आज भी जो खबरें आपको बताई जाती हैं, जो चीजें भी हम देखते हैं, जो भी आजकल की जो अभी की सूरत हाल बनी है इसी हफ्ते के अंदर, तो जब भी हम डाइसेक्ट करते हैं चीजों को, अलग अलग देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर भी, वेस्ट एशिया के अंदर भी, इसके अलावा पूरी दुनिया के जो मौजूआत हैं उसमें, मतलब यूक्रेन भी, यूक्रेन का मौजू इस वक्त सफे अव्वल का मौजू है, और इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो फलस्तीन का मौजू है वो भी सफे अव्वल का मौजू है। तो हम बहुत सारी चीजों को ऐसा नहीं कर सकते कि हम इन चीजों को बिल्कुल ही बहुत काट के देखें, बल्कि नहीं, एक आलमी सतह के ऊपर इन चीजों को देखने की जरूरत है, और इसको देखने वाले भी हमारे पास तबकात हैं। इसी तरह चीजें हमें, हमारे लिए क्लियर होती हैं कि अभी इन्हीं हवादिस को देखने वाले, मसलन सैयद मुकावमत सैयद हसन नसरुल्ला की शहादत हुई लबनान के ऊपर, ज़ाहिया के ऊपर टनों बम गिराया गया, ये एक ऐसा इवेंट हुआ जो हिस्ट्री के अंदर टर्निंग पॉइंट है। बात इवेंट्स जो है वो हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट्स हैं, जिन्होंने जो कुछ अभी डगर के ऊपर चल रहा था मामला इंटरनेशनल सतह के ऊपर, उसको ये सरे तब्दील करेंगे। जो मामला उनमें से इन मामला तो कहते हैं ये रेवोल्यूशनरी इवेंट्स हैं, रेवोल्यूशनरी इवेंट्स हैं, और इनको पॉलिटिकल साइंसेस के अंदर टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ होता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फेज तय होता है। मसलन जैसे इनकलाब इस्लामी आया, उस वक्त जब कम्युनिज्म था और कैपिटलिज्म था, बस दो ही बातें होती थी, या सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की, या फिर इस तरफ कैपिटलिज्म की, अमेरिका और रूस, दो ही चीजें थी। एकदम से जब 1979 के अंदर इनकलाब इस्लामी आया तो वो भी एक रेवोल्यूशनरी पॉइंट था हिस्ट्री का, जिसने तारीख के धारे को बदल दिया, ठीक है, और एक जैसे कहते हैं हिस्ट्री का पेज टर्न हुआ है वहां पे। इसी तरीके से उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत बड़ा वाकया 9/11 का हुआ। 9/11 का जो वाकया हुआ, अगरचे वो खुद साख्ता वाकया था, लेकिन उसने भी, वो भी टर्निंग पॉइंट था पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर। और इंटरनेशनल अफेयर्स से जो लोग आईआर को देखते हैं उनको पता है, 9/11 हमेशा से देख कहते हैं कि 9/11 से पहले के मामला तो 9/11 के बाद के मामला, इंकलाब इस्लामी से पहले की सूरत हाल और इंकलाब इस्लामी के बाद की सूरत हाल। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कासिम सुलेमानी की शहादत हुई, जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत, ये हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। कासिम सुलेमानी की शहादत से पहले हतमन इस तरह की सूरत हाल नहीं थी कि जिसके अंदर तूफानुल अक्सा जैसे ऑपरेशन को किया जा सकता था। हतमन में आपके खिदमत में कर रहा हूँ, 2020 के अंदर ये सूरत हाल नहीं थी कि तूफान उल अक्सा जैसा ऑपरेशन उम्मत इस्लामी, जो कि उसकी बुनियादें रखी जा रही थी, बन रहा था, चीजें फाइनलाइज हो रही थी, लेकिन उस वक्त वो सिचुएशन नहीं थी। लेकिन कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद पैलेस्टीनियन मूवमेंट के अंदर एक ऐसी तब्दीली आई जो आज की जो ये सूरत हाल हम और आप मुशाहिदा कर रहे हैं उसका उसकी स्पीड बढ़ गई। ये जो डेवलपमेंट्स अभी मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही हैं और पूरे खत्ते के अंदर हो रही हैं, इसको स्पीड अप करना कासिम सुलेमानी की शहादत और उनके खून के नतीजे के अंदर हुआ। उसके बाद जिस तरह से आपने तूफानुल अक्सा 2023 में, यही अयाम आज से 2 दिन बाद हम उसकी सालगिरह बनाएंगे, 1 साल मुकम्मल होगा 7 अक्टूबर 2023 के अंदर, जो कुछ हुआ बिल्कुल इसमें बड़ा मुसम्मा था, वाकई एक तूफान था। तूफान ही आके इस तरह की चीजों को तब्दील करता है। एक पूरा एक तूफान आया जिस तूफान के मिसाइल फकत मकबूजा फलस्तीन के ऊपर नहीं लगे, क्योंकि आपको पता है फलस्तीन के ऊपर ही उन्होंने जो इसराइल ने कब्जा किया, पता अपनी ही जमीनों के ऊपर मिसाइल मारे कि जिसके ऊपर काबिज थे ना, ये किसी और की जमीन पे या खुदा ना खास्ता कोई जारहियत की है या कोई तजावुज किया नहीं, अपने उन्हीं जैसे कोई शब्द एक कमरे में रह रहा हो उसके एक कमरे को किसी ने गस्प कर लियो और वो अपने उस कमरे के अंदर जाके अपने दुश्मन को मारते हैं, तो नहीं कहेंगे कि आपने तजावुज किया आप हमारे कमरे में क्यों आए, नहीं भाई ये कमरा पहले से ही मेरा था, वो तो आप लास्ट 70 ईयर्स से मेरे कमरे के ऊपर गासिब थे। लेकिन दुनिया ने इस खबर को ऐसे फैलाया क्यों? आज कोई भी जंग जो है वो मीडिया वॉर उसके साथ है, यानी आज अगर आपको क्लैशन गोफ जो है वो आपको रखनी पड़ेगी दूरबीन के ऊपर यानी कैमरे के ऊपर, आपको क्लैशन गोफ रख के चलानी पड़ेगी। ये मिसाल दी जाती है कि इस वक्त जो प्रोपेगेंडा वॉर है और जो आर्म फोर्सेस लड़ रही हैं वो मीडिया वॉर में अगर कोई हारा हुआ है वो ग्राउंड वॉर पे अपनी जीत को अगर नहीं दिखा सकता वो ये जंग हार जाएगा। और यही कोशिश 7 अक्टूबर के बाद से, जिसकी सालगिरह मनाने जा रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 के बाद, जैसे ही तूफानुल अक्सा हुआ अब फौरन से एक मीडिया वॉर शुरू हुई कि पूरे खित्ते के अंदर डिस इंफॉर्मेशन का बाजार गर्म करना, जिसके अंदर आपने देखा वो शुरू शुरू के जो वाकयात थे आपको याद होगा पहले 2-3 हफ्तों में कि इतने बच्चों को मार दिया गया, इतने छोटे छोटे बेबीज और ये वो दिखाया गया, बाद में खुद ही अमरीकी सदर को भी माजरत करनी पड़ी कि नहीं मामला ये नहीं था, मामला कुछ और था, जब चीजें क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ये चीजें और ज्यादा जो है वो समझ जाए कि आसान हो गई है करना, फिर बाद में एकदम से इस सतह तक जो है वो डिस इंफॉर्मेशन का बाजार गर्म होता है। तो एक तो ये बहुत हमारे बहुत बड़ा चैलेंज एआई और मीडिया का चैलेंज है जो भी इस वक्त इस मैदान के अंदर मौजूद है, अगर वो मीडिया वॉर सही नहीं लड़ रहा यानी वो सही खबरें नहीं पहुंचा पा रहा, रियलिटी नहीं बता पा रहा, तो लोग फिर उसी जो खबरें सही नहीं होंगी जो हकायक पे मबनी नहीं होंगी उनका एनालिसिस भी बहुत ज़यीफ होगा, उनका एनालिसिस भी बहुत वीक होगा, उनका एनालिसिस इतना वीक होगा उस वीक एनालिसिस के नतीजे में फिर दोबारा तबकात बनेंगे, फिर दोबारा तबकात बनेंगे। कैसे तबकात बनेंगे? अब डिफरेंट आप देखें, अभी जब हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई एक तबके ने खुशी मनाई, अब आप मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल के तौर पे पेश करूँ, 2-3 सेगमेंट्स यानी कि लोगों के वो बन गए कि एटीट्यूड्स क्या थे, लोगों के फीडबैक्स क्या थे इसके इस वाकये के ऊपर, इस बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के ऊपर हिस्ट्री के सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर, एक तबके ने बाकायदा खुशी मनाई जिसके अंदर बाज ने अपनी खुशी को छुपाते हुए खुशी बनाई, जैसे कि अरब हुक्मरान जो रेजिस्टेंस की पॉलिसी के मुकाबले में समझौते की पॉलिसी को, डायलॉग की पॉलिसी को लेकर चलना चाहते थे जिससे इसराइल की जारहियत और बढ़ी थी, लेकिन इनकलाब इस्लामी के बाद चूंकि रेजिस्टेंस की पॉलिसी को आगे लेके जाया गया, जो खुद इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की से भी और सैयद हसन नसरुल्लाह को भी अपनी इस डायलॉग वाली पॉलिसी को, सरेंडर वाली पॉलिसी को इसराइल के सामने हारता हुआ देख रहे थे रेजिस्टेंस की पॉलिसी की कामयाबियों की वजह से, मुकावेमत की पॉलिसीज की कामयाबियों की वजह से उनको हसन नसरुल्लाह का अंदर से दिल में एक बैर उनके अंदर था, कीना था उनके दिल के अंदर कि एक अरब वर्ल्ड के अंदर एक अजम की पॉलिसी को लीड करने वाला ये सैयद हसन नसरुल्लाह है। अजम की पॉलिसी यानी वो इनकलाब इस्लामी को इस्लाम का मरकज नहीं देखते, वो तो फारसी ईरान और इस तरह से देखते हैं मामलात को, उनके लिए वो रेवोल्यूशन ईरानी रेवोल्यूशन है, इस्लामी रेवोल्यूशन नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने अरब वर्ल्ड के अंदर अहले सुन्नत को दूर किया ये कहकर कि ये एक शिया रेवोल्यूशन है, ये ईरानी रेवोल्यूशन है। इससे वो पॉलिसी जो शिफ्ट आया था पैलेस्टाइन की मूवमेंट के उनवान को तब्दील किया था इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने और कहा था ये अरबी मसला नहीं है सिर्फ, ये फकत जो है वो कोई एक नेशन का मसला नहीं है, बल्कि ये इस्लामी मसला है। और इसकी बागडोर इमाम खमेनी रिजवानुल्लाह ताला ने हुक्मरानों के हाथों से निकाल कर अवाम के हाथों में दे दी थी। और उसमें भी एक आधा मुसल्लाह जद्दोजहद, और ना टू स्टेट पॉलिसी नहीं चलेगी, बल्कि वो जो काबिज हुए उनको जाना पड़ेगा। और इमाम खमेनी ने वाजे फरमाया था, इसराइल अजबैन बेरबत। अब इसने इस पॉलिसी ने ये रेजिस्टेंस की पॉलिसी का मेन स्लोगन था, इसराइल अज बैन बिरवन, इसराइल को नाबूद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इस पॉलिसी के मुकाबिल वो अफराद थे, उनके लिए हसन नसरुल्ला बहुत बड़ी रुकावट थे। तो इस तबके ने खुशी बनाई, जैसे दाइश, दाइश ने खुशी बनाई, मुख्तलिफ जगह पे आपने देखा कि इन्होंने खुशी बनाई, क्योंकि उनको पता है कि इस पॉलिसी की वजह से शाम में हमने मार खाई है, रात में हमने मार खाई है, तो उनके लिए, क्योंकि तो ये हसन नसरुल्ला हो या कासिम सुलेमानी हो, ये इस पॉलिसी के हेड्स हैं, इस पॉलिसी को एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इस पॉलिसी को चलाने वाली, इस तरह से। मतलब एक तबका जो है वो इसके अंदर बना, यही समझौते वाला तबका, ये डिस्कशन डायलॉग वाला तबका जो खुश हुआ, एक तबका ऐसा था कि इसके अंदर, अब इसको हम डाइसेक्ट कर रहे हैं इसको, इस चीज को, कि आप इसको देखेंगे, वो तबका बिल्कुल फलस्तीन के मामले में पहले ही चुप है। वो तो सिर्फ इतना देख रहा है कि एक दुश्मन के जरिए से उनके एक दुश्मन का नुकसान हो रहा है, ये तबका बिल्कुल खामोश है। दूसरा तबका ऐसा है कि जिसने जब ये खबर सुनी, तो ये खबर सुनने के बाद इसके दिल के अंदर एक अफसोस भी आया और एक गम भी आया, और गम के साथ साथ खौफ भी आया। एक तबका ऐसा है, ये वो तबका है कि जो हिजबुल्ला के साथ भी, मुकावेमत के साथ भी, इंकलाब इस्लामी के साथ भी, और जहूर की इस मूवमेंट को समझता भी है, दर्द भी रखता है, इनके साथ भी है। लेकिन जिस तबके के दिल में गम आया, खौफ भी आया, और साथ साथ मायूसी भी आई, थोड़ा सा उसका हौसला भी नीचे आया, आपने देखा बुद्धम से मायूसी की सी एक फिजा बनी, सरदार सैयद हसन नसरुल्ला शहीद की शहादत के बाद, ये जो मायूसी आई ना, इसके लिए ये सेशन बहुत जरूरी है। ये जो सेशन हम और आप आज आपके खिदमत में जो चीज बयान हो रही है, उसके लिए ये सेशन जरूरी है कि ये मायूसी की फिजा नहीं आनी चाहिए थी। अगर हम अपनी आइडियोलॉजी को समझते हो, अपनी रूट्स को समझते हो, और अपने आइडियोलॉजी के जो हमारे बड़े हयाती नुकात हैं, कि जिससे हमें एक्चुअली पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमें पता चलता है। मतलब कुरान मजीद की एक आयत है, कुरान मजीद की इस आयत के अंदर खुदावंद मुताल फरमाते हैं, अलम तर कई फजरब अल्लाह कलमतिन तय्यबतिन, ये सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 25-26 आपके खिदमत में तलावत का शरफ हासिल कर रहा हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعطي أكلها كل حين يعني ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تعطي أكلها كل حين بإذن ربها। خداوند متعال ये फरमा रहे कि क्या तुमने नहीं देखा कि खुदावंद मुताल जो खुदावंद मुताल मिसाल पेश करता है किसकी, एक शजरे तैयबा की, कलमतन तय्यबतन, एक बिल्कुल नाब नाब, यानी जिसे कहते हैं कि एक सादिक स्टैंस, यानी जैसे मैं आपसे कहूं कि तय्यब स्टैंस, या मैं आपसे बोलूं एक ऐसा कौल, कौले सादिक, एक बिल्कुल सच्ची बात जो खुदावंदे बदल आपको बताना चाहता है, वो सच्ची बात क्या है, हकानियत क्या है, वो हकानियत ये है कि ये बिल्कुल शजरे तय्यबा की मानंद है। ये हिजबुल्ला के लिए बेहतरीन ताबीर है जो कुरान मजीद के अंदर आई है, ये एक शजरे तैयबा की मानंद है। ये जो ओवरऑल मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो ओवरऑल मुकावेमत की पॉलिसी है, इनकलाब इस्लामी का वजूद है, जहूर की जमीना साजी के अंदर, तशय्यु के अंदर एक ये फिक्र है, जिसको प्योर मोहम्मदन इस्लाम से भी ताबीर किया जाता है, इमाम खमेनी की सलाह थी, जिसको अल्लामा इकबाल मशरब नाब भी कहते हैं अपने कलाम के अंदर, कुरान इसको दीनुल खालिस भी कहता है, इसी फिक्र को, इसी आइडियोलॉजी को, इसको कुरान मजीद कह रहे का शजरतन तय्यबतन, ये बिल्कुल शजरे तय्यबा की तरह है, ये बात, ये कौले सादिक शजरे तय्यबा की तरह है। वो क्या, असलोहा साबितुन, यानी इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत है, वह फरओआ फिस समा, और इसकी जो शाखें हैं ना वो आसमानों की जानेब है, बुलंद है, बड़ी है। तो उती उकुलहा कुल्लाहीन, ये एक ऐसा शजरे तय्यबा है, एक ऐसा तय्यबा दरख्त है कि जो अपना फल हर आन दे रहा है, हर आन अपना फल दे रहा है। इज़्ने रब्बेहा, अपने रब के इज़्न से। अब खुदावंद मताल कह रहे हैं कि खुदा खुदा जो है वो लोगों को ऐसे ही मिसाल देता है, आगे फरमा रहे हैं इसी में कि खुदा बंदे मुताल लोगों को ऐसे ही मिसाल देता है, या आयत नंबर 24-25 के अंदर, कि खुदा बंदे मुताल ऐसे ही मिसालें दे के लोगों के लिए मिसाल लेकर आता है ताकि उनको तजक्कुर दे, ताकि उनको बताए, ताकि उनके हौसले पस्त ना हो। बस एक शख्सियत के जो इस पूरे शजरे तैयबा की, हिजबुल्ला एक शाख है, शजरे तैयबा इंकलाब इस्लामी की वो आइडियोलॉजी जो फलस्तीन के कजिए को मरकजी कजिया कहती है, फलस्तीन के मामले को, और कहती है कि ये मामला जो है वो सॉल्व होना जरूरी है। ये दुनिया इस्लाम का असली मसला है, ये अरबी मसला नहीं है, ये किसी फकत मुल्क का एक जमीन के टुकड़े का मसला नहीं है, बैतुल मुकद्दस का मसला एक आलम इस्लाम का मसला है, बिलउमूम और बिलखसूस दुनिया इस्लाम का पहला मसला है। इस आइडियोलॉजी को रखने वाले को कुरान कह रहे हैं कि इनकी जो मजबूती है ना वो इसी वजह से है। एक ये इस्तेलाह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिमतन तैयबतन। ये कलिमतन तैयबतन, इससे मुराद यही इस्लाम नाम है, यही प्योर आइडियोलॉजी है, जिस प्योर आइडियोलॉजी के ऊपर लास्ट 45 ईयर्स से, इनकलाब इस्लामी के फौरन बाद से, डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डील करने का अंदाज तशय्युब ने एक दफा अलग तरीके से देखा। आजादारी कलमतन तैयबतन के अंदर, प्योर मोहम्मदन इस्लाम के अंदर आजादारी एक अलग है, एक अलग डेफिनेशन है आजादारी की, जिसको खुद रहबर मौजम इनकलाब इस्लामी ने जैसे कहा कि मैं आजादार हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसा आजादार नहीं हूँ कि जो बैठ जाए, जो मसलन रुक जाए, जिसके हौसले पस्त हो गए हो इन शहादतों को देख के, बल्कि मैं हुसैनी आजादार हूँ जो कि जिंदा है और जिंदा करने वाला है। और प्यारी इस्तला रहबर मौजम ने अभी 4 दिन पहले रहबर मौजम ने इरशाद फरमाई और बताया कि मैं आगे पढ़ूंगा, जिसके अंदर डेवलपमेंट है, जिसके अंदर रुश्त है, बहुत प्यारी डेफिनेशन दी आजादारी की। ऐसे डिफरेंट, और हज को बोला हज इब्राहिमी, और जहाद मुकावमत शहादत इसकी डेफिनेशन की, कि नहीं भाई ये शहदा जब शहीद हो रहे हैं तो ये हमें ऐसा ना हो हमारा हौसला इनसे पस्त हो रहा हो, क्योंकि हमारी इस आइडियोलॉजी के अंदर, प्योर मोहम्मदन इस्लाम के अंदर जो भी रीजनल हालात बन रहे हैं, चाहे शहीद इस्माइल हानिया का जाना हो, चाहे इससे पहले कासिम सुलेमानी की शहादत हो, चाहे उसके बाद हम देखते हैं सैयद हसन नसरुल्ला की शहादत हो, या जो लास्ट ईयर के अंदर शहीद रईसी की शहादत हो, इब्राहिम रईसी की, ये मामलात बाकी उम्मत इस्लामी को बशारत देने वाले मामलात थे। मैंने कहा ना वो तबका डिफरेंट है जो गम है, जिसको गम है, दर्द है, आजादार है, ये काबिल कबूल है, ये है बिल्कुल अपनी जगह, एक खसारत है, एक लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इन शहादतों की वजह से हमें ये कंफर्म हो जाना चाहिए था। एक एक तो ये कि ये राह दुरुस्त है, ये राह हक है, और ये भी कंफर्म हो जाना चाहिए था कि अब और तेजी से मामला तय होंगे। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, अगर कासिम सुलेमानी शहीद न होते तो तूफानुल अक्सा इतनी जल्दी रोनुमा होना बहुत मुश्किल था। ये इसके लिए कासिम सुलेमानी का बरजख में जाना गोया जैसे लाजिम हो गया था, कि कासिम सुलेमानी का थोड़ा और ताकतवर होना जरूरी था, कुछ मामलात को बहुत खुदा के करीब जाके तय करने के लिए, कुछ मामलात के मुकावेमत के कुछ अफराद को और बहुत पाकीजा अफराद को उधर जाने की जरूरत थी, जिसकी वजह से काम आगे बढ़ेंगे। और अगर ये काम ना हो कलेमतन तैयबतन के अंदर, ये जरूरी है, प्योर मोहम्मदन इस्लाम के अंदर जरूरी है, और हर शहादत से आगे नहीं बढ़ेंगे। मसलन अगर करबला के अंदर मामला यजीदियत की चुंगल में फंस जाएं, हर शहादत से आगे नहीं बढ़ेंगे, हर शहादत से आगे नहीं बढ़ेंगे, सैयदुल शहदा का खून बहना जरूरी है यजीदियत की बिसात लपेटने के लिए। और सैयदुल शहदा ने अपने कलमान के अंदर वाजे ये बात बुलाते में कहा था कि मैं शहादत की तरफ बढ़ रहा हूँ, वाजे कहा था, वाजे 2-3 दफा तो बहुत क्लियर, किसी ने पूछा आपका कारवान कहाँ जा रहा है, उनका ये अपने शहादत, ये वो, ये कारवान मौत का कारवान है, मुझे बताया गया कि ये कारवान बढ़ता जा रहा है, मौत इसके करीब आ रही है, ये मौत के करीब जा रहा है। कलमा इस्तिरजा जो सैयदुल शहदा ने तिलावत फरमाया था हजरत अली अकबर के साथ चलते हुए, वहां पे हजरत अली अकबर ने पूछा ये आपने क्यों तिलावत फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वहां पे भी सैयदुल शहदा ने ये इसको तशरीह किया था, तबीन किया था। ये मायूसी की फजा इसलिए आती है कि ये जो हमारे, जैसे ये आयत आपकी खिदमत में तिलावत की है, इसके अलावा फइन्ना हिज़्बुल्लाह हुमुल ग़ालिबून, ये आयत हमारी आइडियोलॉजी की, प्योर मोहम्मद इस्लाम की, ये बड़ी कलीदी की पॉइंट्स है, कंफर्म है, सईदुल शहदा शहीद हो गलबा हमारा ही है, अमीर अल मोमिनीन शहीद हो मस्जिद कूफा में गलबा इसी उसका है, शहादतों से काम और तेजी से आगे बढ़ेगा, अगर शहादतें नहीं होंगी तो काम बहुत स्लो स्लो जाएगा। जैसे मुकावेमत से, जहाद से काम तेजी से आगे बढ़ेगा, फकत दुआओं से नहीं बढ़ेगा, फकत नमाजों से नहीं बढ़ेगा। ऐसी इस आइडियोलॉजी के अंदर जब तक पाकीजा खून इसकी जड़ों में नहीं जाएगा, काम सूरत से आगे नहीं बढ़ेगा, जहूर का मैदान सूरत से नहीं सजेगा। मैं और आप जो माहौल अभी देख रहे हैं, इस माहौल का कि जिसमें वादुस सादिक दो ऑपरेशन इसराइल के ऊपर जो दो हमले हुए बड़े जबरदस्त, के पहले अगर 200 मिसाइल थे तो दूसरे वाले में डबल मिसाइल थे 400। तो ये जो हमने हमने और आपने देखा, सैयद इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद एक हमला, और सैयद हसन नसरुल्ला की शहादत के बाद एक हमला, और फिर दुश्मन का जवाब देने की हिम्मत भी ना करना, और दोनों की दूसरी की शिद्दत का 2 गुना यानी 10 गुना से भी ज्यादा होना। ये जो हम और आप देख रहे हैं कि शहादत की वजह से, फकत मुकावेमत की वजह से नहीं था। मुकावेमत का एक दर्जा है शहादत, जिस दर्जा शहादत से मुकावेमत के ओवरऑल आहदाफ हासिल होते हैं। ओवरऑल आहदाफ जो मुकावेमत, जैसे हमने कहा कि हमारा जो मेन टारगेट है वो जहूर है, जो हमारा असल टारगेट है जहूर है, उस जहूर के लिए इस खित्ते के अंदर इस शैतानी जरसुमे को नहीं होना चाहिए, इसराइल को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये हमारे एक जेली नुकता है। और इसराइल के साथ साथ जो सर रहबर मौजम ने कहा कि असल हमारे खित्ते के अंदर जो फसाद की बुनियाद है, अगर आप डाइसेक्ट करें इसको, तो रहबर मौजम ने बड़ा क्लियर इसको फरमाया कि यहाँ पे यूरोप की प्रेजेंस हो, यूरोप के हवालियों की प्रेजेंस हो, या अमेरिका की प्रेजेंस हो, खुद इसराइल, ये यहाँ पर तमाम शर, तमाम बुराइयों की जड़ इनकी प्रेजेंस यहाँ पर है। जब तक ये अफराद यहाँ पर नहीं थे, ये माहौल यहाँ पर नहीं था, यहाँ पे अमनियत थी। और अगर इस खित्ते को अमनियत का दिन देखने हैं, इन अफराद को यहाँ से जाना होगा। कासिम सलेमानी की शहादत पर जो इंतकाम रहबर मुअज्जम ने हद अकल कहा था, वो ये था कि इस खित्ते से इनका सफाया, जैसे अफगानिस्तान से, फिर उसके बाद ये भागे, फिर उसके बाद इराक से भागे, और फिर मुख्तलिफ जगहों से ये गए, और अब भी अपने आप को काफी ऐसे सेफ करके बैठे हुए, जब भी कोई हमला होता है तो कहते हैं कि हमने नहीं किया, हम इसके अंदर शामिल नहीं थे, हमारा इसके अंदर, हमसे नहीं पूछा गया था, ये इसराइल का अपना डिसीजन है या फलाएंगे। तो इनका असल रसूल का कम होना, इनकी दहशत का कम होना, इनके वो जो इन्होंने एक आर्टिफिशियल अपनी एक उबूहत बनाई थी उसका टूटना, और वो इन्हीं हमला के नतीजे में, चाहे वो एन एल असद का हमला हो, चाहे वो यहाँ पर हो वादु सादिक एक हो या वादु सादिक दो हो, बस ये तबकात बने, तीन तबकात आपकी खिदमत में मैंने अर्ज की है। एक तबका वो था कि जिसने खुशी बनाई, चाहे वो तकफीरी लश्कर हो, चाहे वो ये अरब खाइन हुक्मरान हो, और वो अफराद जो डील की पॉलिसी के ऊपर चलते थे। दूसरा तबका वो जिनके अंदर जो, जैसे हम और आप हैं, अजादार भी हैं और गमनाक भी हैं, लेकिन एक जो तीसरा तबका था जो खौफ में आ गया या मायूस हुआ, इसको अपनी आइडियोलॉजी को दोबारा से रुजू करना पड़ेगा। ये तबका खुद, ये जो बिहेवियर इसका इन मामला को देखकर आया, जिसके भी दिल में ये चीज आई, जिसके भी दिल के अंदर मायूसी आई, जिसका भी हौसला टूटा इन शहादतों से, इसका मतलब ये समझ रहा था मेरी आइडियोलॉजी में अफराद के जरिए से काम आगे बढ़ते हैं, अगर कोई फर्द बहुत मुहिम चला जाएगा तो हमारे काम अब रुक जाएंगे और अब मुझे मायूस हो जाना चाहिए। जबकि अगर ये पीछे देखे तो खुद नबी अकरम ये बात फरमा, नबी अकरम के दौर में कुरान ये बात कह रहे कि अफा इन माता ओ कोतिला इनकलब तुम अला आकाबिकुम, ये पैगंबर जो तुम्हारे दरमियान मौजूद है, अगर ये इनको मौत आ जाए या ये शहीद कर दिए जाए, ओ कोतिला, या इनकी शहादत हो जाए, या तुम दोबारा से पलट जाओगे, यानी तुम खत्म, यानी तुम समझ रहे हो इनके पास मामला खत्म हो जाएंगे। हमारी आइडियोलॉजी के अंदर अफराद से मामला आगे नहीं चल रहे होते, ये अफराद को अपना रोल प्ले करके अपने मंजिल मकसूद और अपनी फौज अजीम के ऊपर पहुंचना होता है, जैसे करबला वाले पहुंचे, या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूजू फौजन अजीमा, ऐ काश मैं आपके साथ होता तो मैं फौज अजीम पे पहुंच जाता। हमने देखा ये वाला तबका तो समझ रहे कि अच्छा ये भी कामयाबी थी, ये भी हसन नसरुल्लाह की कामयाबी थी कि ये फौज अजीम पर फाइज हो गए, अपनी जिम्मेदारी अदा करके चले गए। लेकिन यही शोहदा हमसे कह रहे हैं, यही शोहदा हमसे कह रहे हैं ये बात के कुरान मजीद कह रहे हैं कि यस्तबशिरू बिल्लज़ीना लम यलहकू बिहिम मिन खल्फिहिम, ये शहदा बशारत दे रहे हैं उन लोगों को जो अभी तक शहीद नहीं हुए, यानी शहदा के वारिस और बाकी मानदा जो इनसे अभी पीछे रह गए, इनके साथ साथ हैं लेकिन अभी ये शहीद नहीं हो रहे, ये उनको बशारत दे रहे हैं, लेकिन ये क्या रिसीव कर रहे हैं, खौफ हौसला, जबकि शहीद बशारत दे रहे हैं। शहदा के बारे में ये आयत है कुरान मजीद की। यहां से हम कुरान की आइडियोलॉजी के अंदर देखें तो हमें सक्सेस ही सक्सेस नजर आ रही है, कामयाबी ही कामयाबी नजर आ रही है, दुश्मन की एक के बाद एक हिमाकत करना, हमारे काम को स्पीड अप कर रहा है, अगरचे हमारी बहुत सारी कीमती जानों का लॉस हो रहा है, और अगर ये जिंदा होके हमारी लीडरशिप का किरदार अदा करते हैं, रहनुमाई करते हैं, उससे भी काम आगे बढ़ता है। लेकिन एक हर्डल ऐसी होती है अपने इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, वहां पे एक बहुत कीमती खून बहना जरूरी है। अगर ये कीमती खून ना बहा तो शायद एक दिन का, 1 साल का सफर जो है ना, 10 साल में तय करना पड़ेगा। ठंडा हो जाता है मामला, चीजें। अब खुदा बंदे मुताल का ये होता है, खुदा बंदे मुताल अपने इज्न से फिर उसमें से चुनता है, शहदा को इंतखाब करता है, जिससे ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा का काम आगे बढ़ता है। यही काम जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद हमने देखा, यही काम अमीर अल-मोमिनीन की शहादत के बाद हमने देखा, वरना इन कलीदी शख्सियात के बाद तो काम मामला खत्म हो जाना चाहिए था। या यही काम हमें नबी अकरम की रहलत के बाद भी हमने देखा, यही काम हमने जो है वो इमाम हसन के बाद भी देखा, यही काम सैयदुल शहदा और करबला सबसे बड़ी मिसाल है इसकी। और इसीलिए आपने देखा जनाबे जैनब किस तबके के अंदर है, इन शहादतों और ऐसी ऐसी शहादतें जिसकी तारीख में ना पहले मिसाल मिलती है ना बाद में कोई मिसाल मिलती है। जनाबे जैनब उस तबके में जो इन सब चीजों को देखने बाद कह रही है कि मा रही तो इल्ला जमीला, हमने मैंने इसके अंदर हुस्न और जमाल के अलावा कुछ भी नहीं देखा। ये बहुत अजीम तबका है, इसे कहते हैं अहले इत्मीनान। ये बहुत अजीम तबका है, ये उस तबके में भी सुपरलेटिव है जो गमजदा हुआ है, लेकिन उसको ना खौफ आया है और ना ही उसका हौसला टूटा है, बल्कि उसने इसी करबला के अंदर हुस्न भी दिया देखा, और इसी हुस्न से जमाल से हौसला भी लिया, और अपने स्टैंड को वही रखा, कलिमतन तय्यबतन, वही कलिमा तय्यबा और वही हक और सच बात और पाकीजा बात जो इमाम हुसैन वलीद के दरबार में करबला के कयाम के पहले दिन जो इनकार बैत के वक्त कर रहे थे, जो बात वही 6 महीने बाद बहन यजीद के दरबार में कर रही है, बेटा यजीद के दरबार में कर रहा है। ये दोनों शहदा के वारिसों की और शिया आइडियोलॉजी की अहले बैत की तालीमात की वो मुजस्सम नमूना है, जो बता रहे हैं कि इन शहादतों के बाद फिर हमारी जिम्मेदारी बाकी ईमानदारी क्या होती है, हमारा रोल क्या होता है। ये जो खुतबे इन दोनों के हम देखें, और वो खुतबा देखें जो करबला की उस मूवमेंट के स्टार्ट वेरी फर्स्ट डे, 27 रजब को बैत का मुतालबा होता है, 28 रजब को सैयदुल शहदा वहां पे कलाम कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं वलीद के दरबार के अंदर, और बैत से इनकार करके बोल रहे हैं मुझ जैसा तुझ जैसी की बैत नहीं कर सकता। और वहां पे जनाब जैनब के जुमले आप देखें, तुम इस जिक्र को मिटा नहीं सकते, अब तुमने हमेशा के लिए कालक अपने मुंह पे मल लिया है, ये तुमने अपने ही गोश्त नोचा है, ये तुमने अपने ही नुकसान किया है, और वो यदिकल खैर हम है, वो जो खैर का हाथ है वो तुम हो या हम है, उनको खुद भी किया। आप बात देखें कि तशय्यु को, ये वो चीज थी जो हमें करबला से, मैंने आपसे कहा ना कि जिनके जिनके लिए पूरी आइडियोलॉजी, क्योंकि देखिए तशय्यु का भी एक तबका ऐसा भी है, खुद तशय्यु के अंदर भी आप देखें एक तबका ऐसा जो शोहरत के भूखे, सरवत के भूखे, अब चाहे वो नौवा खान हो, टॉप 5 नौवा खान आप देख लें, आपको बिल्कुल उनकी तरफ से फलस्तीन के लिए कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। मतलब जो वाकई तशय्यु के लिए नंग और आर तबका है, और ऐसी टॉप 5 कुछ खुताबा भी ऐसे हैं, उलमा में से भी ऐसे लोग हैं जो आप देखते हैं जिनके अशरे सबसे बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े सबसे मरकजी अशरे पाकिस्तान के अंदर आप उनके देख लें, उनमें से बाज ऐसे हैं जिनकी आप पूरे साल कोई जुमला नहीं दिखा सकते कि उन्होंने फलस्तीन के हक में कोई बात की हो, और ये कह रहे हैं मैं भी इमाम हुसैन का चाहने वाला। और इसी तरह टॉप नौ खानों को भी देख लें, टॉप मनकबतें पढ़ने वालों को भी देख लें, ताकि आपको तबकात पता हो कि भाई नहीं, हम समझ रहे थे ये शिया है, हम समझ रहे थे ये भी वो अहले बैत के चाहने वाले हैं। इसलिए इमाम खमेनी रिजवानुल्लाह ताला ने कहा ये जो तारीख के टर्निंग पॉइंट है, ये एक शख्स को हिलाते हैं और कहते हैं कि आप पहचानो, क्योंकि इसमें खरा और खोटा अलग हो जाता है। ऐसे मामला जब आते हैं, ऐसी शहादतें जब आती हैं, अब आप देखिए किसका कितना रिव्यू। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अफराद का हम इसलिए भी कहते हैं कि भाई, क्योंकि उनके पास जो खबरों की सोर्सेज हैं हम देखते हैं, और मुख्तलिफ और भी खत्तों के अंदर वो जो कुछ उनको बताया जा रहा है कि वो सनसनी फैलाना, खौफ फैला देना, या कभी मायूसी फैला देना, ये चीजें कर देना, उनकी पहले ही फेज जो है एनालिसिस का, वो सही इंफॉर्मेशन का ही ना होना होता है, इसीलिए वो बहुत सारे वो नतीजे निकाल रहे होते हैं जो एक सेकुलर इंसान निकालता है, एक मादी तौर पे सोचने वाला इंसान निकालता है, जिसके जिसके जहन में अफराद के चले जाने से काम रुक जाता है तशय्यु के अंदर मसलन, ठीक है। बाकी एक तबका ऐसा था जिसको हम हामी तबका कहते हैं, जो ना इस मैदान पे ये तमाशा देख रहा है इस मैदान का, जिसमें एक अक्सरियत दुनिया इस्लाम भी है, मतलब जिसमें पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के हुक्मरान खासतौर पर, और पाकिस्तान के अंदर बास इन्फ्लुएंस रखने वाली शख्सियात भी हैं, जिसके अंदर जिसमें मसलन जो तमाशा देख रहा है इसका, जिसके अंदर ये एक किरदार अदा कर सकते हैं। बल्कि हसपाल हानिया ने जैसे कहा था, पाकिस्तान सिर्फ धमकी भी दे दे रहा है इसराइल को, तो बहुत सारे मामला हमारे सॉल्व हो जाएंगे। जो एक जैसे कहते हैं एक डिसीजन उनका थोड़ा सा, इसके अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशनरी टर्न लेकर आ सकता है। पाकिस्तान उन ममालिक में से, लेकिन तमाशा देख रहा है, वो वाला काम कर नहीं रहा। चाइना भी ऐसा ही है, देख रहा है चीजों को, लेकिन वो इतनी उसके अंदर वो नहीं कर रहा। इवन रशिया भी ऐसी है, हामी है इसका, पाकिस्तान भी हामी है, फलस्तीन की हिमायत कर रहा है, नुसरत नहीं कर रहा। ये बहुत यानी बहुत डीप फर्क है। हामी है इसका, हिमायत कर रहा है, कह रहा है इसराइल जालिम है, फलस्तीनी मजलूम है, लेकिन नुसरत नहीं कर रहा। नुसरत का जो हक हाँ इनको अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहा। अपनी कैपेसिटी में जो नुसरत ये कर सकते हैं वो नुसरत भी नहीं कर रहा। बाकी मैंने आपकी खिदमत में जो थी, बाकी कुछ लोग बिल्कुल ही ला ताल्लुक है, जैसे मतलब तालिबान ला ताल्लुक है, बिल्कुल ला ताल्लुक, जिन्होंने मतलब कोई गैर जानबदार बिल्कुल ना, हाँ ना किसी में भी नहीं है, ना इधर है ना उधर है, इस तरह से इनको हमें अलग अलग देखना चाहिए, इन तबकात को। बहरहाल इस मूवमेंट के अंदर ये सारे सूरत हाल, हमें ये चीजें वो करनी चाहिए कि इस मामला के अंदर एक तो हमारी ये आइडियोलॉजी और ये हमारी जो असल बेस है वो हमारा यही नजरिया है, जो तशय्यु के अंदर भी फिल्टर नजरिया नजरिया मैंने आपको बताया। तशय्यु के अंदर एक ऐसा भी तशय्यु है जहां वो ना वो नौह खान ना उन नौह खानों के बेटे कभी आपको तायीद करते हुए नजर नहीं आएंगे, कभी अपनी हद तक जो उनकी व्यूअरशिप्स हैं या जो उनकी मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो एक पावर है, इवन उसको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये उनकी तलवार है, खुदा उनसे ये नहीं का पूछेगा बाद में, खुदा उनसे पूछेगा जो तुम्हारे पास ताकत थी, जो तुम्हारे पास चीजें थी, जो तुम्हारी फॉलोइंग थी, नहीं वो अपनी इस फॉलोइंग को सर्वत के लिए या शोहरत के लिए, दो चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे, मुकावमत के लिए, नुसरत हुसैन के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत क्लियर बात है, और ये चीजें हमें इस मौके पे लोगों के चेहरों से नकाब उतारना भी चाहिए, जहां हम बैठते हैं उठते हैं सपने, लोगों को समझे जिनको आप समझ रहे थे ये शायद सफे अव्वल का नौ खान है तशय्यु का, जबकि ये बुजदिल तरीन इंसान है तशय्यु के लिए, ये खामोश तरीन तबका है तशय्यु के लिए, ये खामोश तरीन, ये करबला का वो किरदार है जिसकी वजह से सैयदुल शहदा को ये दिन देखने पड़े, कि जो इमाम हुसैन की तारीफ करता था नुसरत नहीं करता। ये हमें क्लियर होना चाहिए, नहीं जब हम एनालिसिस कर रहे हैं हमें अपने माशरे के इन किरदारों को पता होना चाहिए, ये किरदार है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। हम सबको ना कहते हैं कि सभी शिया हैं इमाम हुसैन के, हम वैसे ही करें जैसे अहले बैत करते थे कि नहीं ये सिर्फ हमारा हामी है, नहीं ये हमारा फगन मुहिब है, ये हमारा शिया है, अगर हमारे शिया को पहचानना हो तो ऐसे पहचाना, ये हमारा शिया है, ठीक है। इसीलिए सैयदुल शहदा ने वो जो 7200 कूफे के अंदर, बसरा के अंदर, यमन के अंदर और मक्का मदीना के अंदर थे, उन सबके लिए नहीं कहा, सिर्फ उन 72 के लिए कहा कि ये वो अंसार है कि जो ना मेरे नाना को मिले ना मेरे पापा को मिले। बस आज इनकलाब इस्लामी की जो आइडियोलॉजी है, अहले बैत का इस्लाम, तशय्यो, मकतब तशय्यो, इसीलिए रहबर मौजम ने कहा कि सैयद हसन नसरुल्ला के ऊपर फकत ये निगाह ना की जाए कि सैयद हसन नसरुल्ला एक शख्स थे, बल्कि एक मकतब थे। और एक मकतब कैसा होता है? मकतब वो होता है जिसका उठना बैठना सोर्स होता है, मंबा होता है उस आइडियोलॉजी का, वो शख्सियत मंबा बनती है, जैसे खुद इमाम खुमैनी रिजवान का ताला है, जैसे खुद रहबर मौजम इनकलाब इस्लाम, शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी, ये मकतबी शख्सियात होती है। इनके कौल और फेल, उठना बैठना, रफ्तार गुफ्तार से आप दीनी उसूल इनके जिंदगी से ले सकते हैं, जो थ्योरी का मुजस्सम पैकर होते हैं इस्लाम की, हकीकी इस्लाम की, जैसे कासिम सुलेमानी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, ये ऐसी शख्सियात है, खुद सैयद हसन नसरुल्लाह, शहीद हसन नसरुल्लाह, मकतब ये होती है कि आप जिंदगी का कोई भी पहलू निकालें कि हमें अपनी फैमिली के साथ कैसे होना चाहिए, आप देखें सैयद हसन नसरुल्लाह अपनी फैमिली के साथ कैसे थे, हमें अहले सुन्नत के साथ कैसा होना चाहिए, सैयद हसन नसरुल्लाह अहले सुन्नत के साथ कैसे थे, ईसाइयों के साथ कैसे होना चाहिए, दुश्मन के साथ कैसे होने चाहिए, दोस्त के साथ कैसा होना चाहिए, मुकामे मौजम में रहबरी को हमें क्या समझना चाहिए अपनी जिंदगी में, आप इनसे सीख सकते हैं ये बात। गैबत के जमाने में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, ये आपको बताएंगे, ये बिल्कुल वही बताएंगे जो अहले बैत की तालीमात और कुरान की और नबी अकरम की तालीमात का मुजस्सम नमूना है, वो थ्योरी है तो ये प्रैक्टिकल है, ऐसा है बिल्कुल, हमारे जमाने में गैर मासूम होते हुए एक मुजस्सम मकतब है ये अफराद हमारे जमाने के अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, इनसे मैं अपने फासले को देखूं कि मैं भी शिया हूँ, हसन नसरुल्ला भी शिया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ गैबत के अंदर और ये क्या कर रहे हैं गैबत के अंदर। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, एक मारूफ नौ खान क्या कर रहा है, ये भी शिया है, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन नौवा, सबसे ज्यादा जिसकी फॉलोअरशिप हो, जिसको सबसे ज्यादा सुनते हैं, हमारी नजर में ये भी शिया है और वो हसन नसरुल्ला है, वो भी शिया है। अब इसका और इसका फासला कितना है ताकि हमारी आंखें खुलने के लिए, कि हम कहाँ से पहचाने, कलीब क्या है ये पहचानने की, वो गैबत के जमाने में किसके साथ खड़ा हुआ है, शोहरत के साथ या दौलत के साथ, और ये गैबत के जमाने में किसके साथ खड़े हुए, वली अम्र मुस्लिमीन के साथ, शाना बशाना उसकी राह में जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत क्लियर, अपने बच्चों को भी, ताकि हम अपने बच्चों को शुरू से बताएं कि भाई हकीकी तशय्यु ये है, हकीकी मोहम्मदी इस्लाम ये है जिसकी सारी कुर्बानियां दी गई हैं, और आज वो किरदार हमें अलग अलग नजर आ रहे हैं। ये मामला मशरक वस्ता के अंदर बिल्कुल रहबर मौजम ने जो रेड लाइन जो दल के खुतबे के अंदर भी आपने देखा, रहबर मौजम ने कहा सारी जो हम उम्मत इस्लाम के लिए भी और इंसानियत के लिए भी, रहबर मौजम ने कल इसको इस्तेमाल किया इस जुमले को, ये इंसानियत को बचाने के लिए ये हमला था, ये इंसानियत की खिदमत भी हमने की है इस हमले के जरिए से, क्योंकि इसराइल हमारे इस खित्ते के अंदर ओवरऑल पूरी दुनिया को भी डिस्टर्ब किए हुए और हमारे खित्ते को भी डिस्टर्ब किए हुए, और इसका वाहिद राय हल ये है कि इसका सफाया यहाँ से होना है, हमारी पॉलिसी ये है, इसका सफाया यहाँ से होना है। और साथ साथ रहबर मौजम ने ये भी बता दिया कि हाँ ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे रीजन के अंदर, ये मामला का यहाँ तक पहुंचना कि हमारे वहदत का वजूद अहले इस्लाम के पास नहीं रहा, हम मुल्क मुल्क बन गए और लेकिन हम उम्मत इस्लामी नहीं बने। इसको रहबर मौजम ने तकरीबन इस महीने के अंदर बहुत दफा रिपीट किया, लास्ट 22 23 डेज के अंदर इस मतलब को, तकरीबन तीनों अपनी तकरीर के अंदर जो मुहिम तकरीर रहबर मौजम की थी, कि रहबर मौजम ने फरमाया कि हम उम्मत इस्लामी की तस्वीर नहीं है, हम मुल्क मुल्क के तौर पे कर रहे हैं। और कल रहबर मौजम ने बाकायदा बोला ये बात कि इनकी पॉलिसी यही थी कि डिवाइड एंड रूल, और वो यही कर रहे हैं, अरबों को अपने तरीके से डील कर रहे हैं, ठीक है, मुकावमत वाले इस्लाम को अपने तरीके से डील कर रहे हैं, खामोश इस्लाम को अपने तरीके से डील कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो आज रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने के लिए इसके अंदर रहबर मौजम कह रहे रूट कॉज हमारी डिविजन है, हमारी यूनिटी का ना होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंकलाब इस्लामी की इस आइडियोलॉजी को देखिए, कितने अहले सुन्नत ने रिव्यू की अपनी आइडियोलॉजी को, कितने लोगों ने कम से कम आके खुल के हिमायत की कि नहीं भाई हमें जो जो रास्ता दिखाया गया था उसमें तो हमें बड़ा नंग और आर है, उसमें बड़ी जिल्लत है उस रास्ते में, लेकिन जो आज जहाने तशय्यु जो रास्ता तय कर रहा है और जहाने तशय्यु का जो खिताब, जैसे कल आपने देखा पूरी दुनिया ने किस तरीके से रहबर मौजम इंकलाब इस्लामी के खिताब को सुना, कितने वो चैनल्स जिनके अपने मुल्कों के अंदर बैन थे कि रहबर मौजम की चीजें नहीं दिखानी, जैसे खुद पाकिस्तान उसके अंदर 1.5 1.5 घंटा 40 40 मिनट रहबर मौजम के खुतबे को लाइव दिखाया गया। मैंने कहा ना कलिमतन तय्यबतन, पता है कि आज ये तय करेगा कि आगे मामला कैसे जाएंगे, सबको पता है आज खुदा इनके साथ है, आज आइडियोलॉजी इनके साथ है। ये एक उमूमी आराइज थे जो मैं आपके खिदमत में अर्ज करना चाहता था, ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए मुख्तलिफ तबकात क्या है, हमें कैसे सोचना चाहिए, मामला को कैसे अलग अलग करके देखना चाहिए। बाकी आप लोगों के सवाल के नतीजे में मैं इंशाल्लाह अगर और भी कुछ मतलब आपके खिदमत में अर्ज करने होंगे तो आप लोगों के सवाल के जरिए से इंशाल्लाह उसको आपके खिदमत में पेश किया जाएगा। एक मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर,
जी अहमद, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं?
जी, अगला सलाम
सलाम
जी 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 कराची पाकिस्तान से बोल रहा हूँ।
जी
कबला, हमारे दीन को दीनदार लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया, जबकि दीनदारी और दीन शनासी में मैं बहुत ज्यादा नुमाया फर्क पाता हूँ। तो पाकिस्तान में रहते हुए दीन शनास लोगों की शनाख्त कैसे की जाएगी?
बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपने, एक इसके अंदर अपना खुद जो एक कंक्लूजन भी दिया, एनालिसिस भी अपना बड़ा अच्छा जबरदस्त दिया, बिल्कुल ऐसी है। अभी जो उम्मत इस्लामी के अंदर ये बिल्कुल आप ये यकीन कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि इसराइल की ताकत इतनी अमेरिका नहीं है जितना खामोश मुसलमान है, खामोश मुस्लिम उम्मत है, और उम्मत भी नहीं है, ममालिक है, उम्मत की शक्ल नहीं है इनकी, ममालिक के अंदर बटे हुए हैं। और जो जो बर्जस्ता शख्सियात हैं वो मैंने आपके सामने दे दिया कि ये शख्सियात खुदा की बारगाह में जवाब दें उनकी, जो बिल्कुल खामोश हैं अपनी शोहरत और अपनी सरवत को, सिर्फ ये कि वो हमारी दाव पे ना लगे, इतना हम करबला का 61 हिजरी वाली का तस्करा कर सकते हैं, लेकिन आज की करबला में बिल्कुल खामोश हो जाओ, अगर अपने बच्चे बचाने अपनी सकीना बचानी है, अपना अली अकबर बचाना है और अपना महल बचाना है, अपना घर बचाना है, अपनी सरबत बचानी है और सबसे ज्यादा शोहरत, क्योंकि शोहरत इनका खुदा होती है। ये देखते हैं कि जिस चीज से शोहरत मिलेगी वो काम करना है, चाहे अगर जालिम की हिमायत से मिलेगी तो जालिम की हिमायत करेंगे ना, कुरान और खुदा की वजह से। तो आज के दौर के अंदर अगर हमें ये चीज देखनी हो तो आज बहुत आया हो गया अभी हमारे पास मुकाम मुअज्जम रहबरी, इनकलाब इस्लामी की आइडियोलॉजी, जिसको आज अहले सुन्नत में भी, आज तशय्यो के अंदर तो बिलखुसूस, और उमूमी तौर पे अमेरिका के जवानों का यूनिवर्सिटी के बाहर निकल आना, हर संडे को लंदन की सड़कों को भर जाना, किस पॉलिसी की हिमायत कर रहा है? दुनिया के आजाद फितरत इंसान, दुनिया के वो इंसान जिनके नफ्सों को अभी जिसे हम कहते हैं मादियत की गंदगी ने अभी इतना कसीफ नहीं किया, वो आज बढ़ के आगे कह रहे हैं कि नहीं, ये जालिम है, ये मजलूम है। लेकिन हाँ, हमें अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले भी हमने जब सेशन किया था तो हमें एक बहुत अच्छा एक ग्रुप आप ही के उसमें से मिला था, जो पिछले दफा हमने आई थिंक तकरीबन 2 महीने पहले हमने ये सेशन किया था, तो उसमें एक ग्रुप हमारा बना था जो हफ्तावार इन चीजों के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर रहता है कि हमें दोबारा से असर नो इस्लाम की शनाख्त करवानी पड़ेगी। देखिए, ये प्योर मोहम्मदन इस्लाम है जो प्रैक्टिकली यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये इस्लाम की मिलती जुलती शक्लें हैं जो हमारे इर्द गिर्द जिंदगी गुजार रहे हैं, जो अपने तय ये समझ रहे हैं कि हम अभी भी मुसलमान हैं, हम ला ताल्लुक रहकर भी मुसलमान हैं, या हत्ता हम तो मतलब दुश्मन को सपोर्ट करके भी मुसलमान हैं। इसमें हमें अब लोगों की आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये किरदार हम, मेरा और आपका है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सबकी जिम्मेदारी अस्करी जंग के अंदर जाना नहीं है, हमें ये चीजें बतानी पड़ेंगी। अब हमारे सामने हकीकी इस्लाम शनास और फलस्तीन के कजिए ने फिल्टर कर दिया इन तबकात को, और सैयद हसन नसरल्ला की शहादत हो, या इससे पहले शहीद इब्राहिम रईसी की, या शहीद कासिम सलेमानी की, के हत्ता मुसलमानों के अंदर बता दिया कि असल दीन शनास कौन है प्रैक्टिकली। और आ देखिए अहले सुन्नत के उलमा के जो बयान आ रहे हैं, अहले सुन्नत के उलमा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस दफा पाकिस्तान के अंदर जिस तरह जमात इस्लामी ने जैसे तैसे भी बाकियों की नस्बत सफे अव्वल में खड़े हुए थे फलस्तीन की हिमायत में, जमात इस्लामी के अफराद, लेकिन इतनी संजीदगी हमने पहले कभी नहीं देखी थी। और इन्होंने, आपने देखा क्या कहते हैं कि उन्होंने अपना मरकज, अपना मम्बा और ये जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी को ही बनाया इसमें। तो हमें लोगों को इस इस्लाम की तरफ दावत देनी पड़ेगी, इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और सबसे पहले शुरू करें अपने कजन्स, अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपनी फैमिली, कि देखो ऐसा ना हो कि अब जहूर बहुत करीब है, इन्नहु इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, ये शहादतें जो हो रही हैं कीमती, अब मसलन बाज अफराद कह रहे थे अब 3 या 4 कीमती शहादतें बाकी हैं जहूर के लिए, मतलब ये एक आरिफ है, आरिफ है खुद से ईरान के अंदर, वो फरमा रहे थे 3 या 4 कीमती शहादतें बाकी हैं बस अब जहूर के लिए, और कह रहे हैं कि मतलब अब बहुत मामला करीब जा चुका है। तो जो अभी भी ख्वाब गफलत के अंदर है उनको बेदार करने के लिए ये इवेंट्स हो रहे हैं, ताकि वो मरकजी इवेंट से पहले पहले राह रास्त पर आ जाए। जी, और कोई सवाल करना चाहेंगे?
जी अस्सलाम वालेकुम आगा जी, लाहौर से बात कर रहा हूँ आगा। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आवाज़ आ रही है आगा।
जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज।
जी जी आगा, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दर्स दिया। और आगा जी, अब एक चीज़ जो समय नहीं कुछ कर रहा हूँ कि देखिए, अगर हम इसराइल की हिस्ट्री देखें तो जब ये हिजबुल्ला के साथ ये जंग वगैरह हुई 2-3 बार, तो उसमें आगा जी बहुत जल्दी ये लोग हिम्मत हार जाते थे। और इस बार आप देखें कि जैसे यहूदियों के बारे में कहते हैं कि इनको सबसे ज्यादा डर खौफ जो है वो मौत का है, अब आप देखें कि इस बार जो जंग है बहुत तूल कर गई और बहुत ज्यादा इनके लोगों के, बहुत से इनके फौजी भी मर रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ये औरतों बच्चों मजलूमों को मार रहे हैं। तो अगर जी पहली बात तो ये बताएं कि ये इन लोगों में इतना हौसला किस तरह है कि इतनी लंबी जंग इन लोगों ने कैसे लड़ी और इनका मकसद क्या है, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये, औरतों और बच्चों को मारने का इनका मकसद क्या है, जबकि ना हमास कमजोर हो रही है ना ये हिजबुल्ला में, यानी कि लबनान में हिजबुल्ला कमजोर हो रही है, तो इन दोनों चीजों पर रोशनी डालिए।
सबसे पहली चीज जो इनका जो हौसला और सारी चीजें हैं, तो एक तो ये एक कंट्री नहीं है, आपको पता है कि इसराइल एक मुल्क नहीं है। रहबर मौजम ने बड़ी अच्छी इस्तेलाह है, रहबर मौजम ने कहा ये दहशत गर्दों का एक गैंग है, ये कोई मुल्क नहीं है जिसकी कोई नेशन हो, कोई कौम हो, जिसकी कोई हिस्ट्री हो, कोई तमद्दुन हो, सिविलाइजेशन हो, ये एक दहशत गर्दों का अड्डा है। उस दहशतगर्दों के अड्डे को 4 बड़े ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, तो ये जो जितना हौसला और ये चीजें इनको मिल रही हैं, ये सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं चीजों को, यानी कि सिर्फ इस जगह के ऊपर इसराइल एक ऐसी पुलिस चौकी है अमेरिका की, बरतानिया की, जर्मनी की, फ्रांस की और बाज अरब ममालिक की भी। मसलन बहुत ही खुल के हम बात करें कि हत्ता सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात की, कि जिनकी सिक्योरिटी के लिए इस चौकीदार का, अपने चौकीदार को एक कमरा नहीं दे देते, जैसे आप एक कमरा देते हैं घर में चौकीदार को, भाई तुम्हें यहाँ सोना है, यहाँ उठना है, यहाँ बैठना है, यहाँ जागना है, तुम अपने काम करना है। और एक गंद भी इनको अपना साफ करना था, उनको पता है ये बड़े शर्री और बड़े ये यहूद, इनका सबको पता है, जर्मनी को, बरतानिया को, अमेरिका को, फ्रांस को, इन्होंने इसीलिए अपने खित्ते में जगह नहीं दी जब जर्मनी से इन्होंने कहा हॉलोकॉस्ट का वो बना और चीजें कि हमें इधर आना चाहिए, तो उन्होंने इधर ही सारी गंदगी जो है ना वो मिडिल ईस्ट के अंदर डाली। लेकिन कोई ये तय नहीं है भाई आप पे इतना जुल्म हो रहा है, आपको इतनी थ्रेड है फलस्तीन से, हिजबुल्ला से, शाम से या ईरान से, तो आप आ जाए हमारे मुल्क में आ जाए। उनको पता है कि जहां जाएंगे वहां पर ये गंदगी फैलाएंगे। तो एक तो ये है कि वो जंग उनकी है, ये जंग इनकी नहीं है, असल जंग उनकी है। ये सिर्फ अपने चौकीदार के कमरे को बचा रहे हैं कि भाई ये हमारे कमरे को ही मसला हो गया, वो जो कमरा इन्होंने हमें बना के दिया था, इसमें इमाम खुमैनी ने आके पूरी टेबल टर्न कर दी कि आगे एक कमरा फलस्तीनियों का होगा। पहले ये बात हो रही थी कि दो कमरों में फलस्तीनी रह लेंगे, दो कमरों में हम रह लेंगे, तो वो जो आके जो इनके कमरे कम से कम होना शुरू हो गए, तो वो इनकी प्रॉब्लम हुई। तो इसीलिए जिन्होंने कमरे दिए थे, आज असलाह भी वही दे रहे हैं जिन्होंने बरतानिया ने अरबों के साथ डील करके जो ये कमरे इनको यहाँ पे दिए थे, आज वही असलाह भी दे रहे हैं। इनको सारा हौसला वहां से मिल रहा है और वही इनको पुश कर रहे हैं कि नहीं, उनको गैरत है यहूद और गैरत है वो याद करा के, ये एक्चुअली उन्हीं जालिम ताकतों की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, जो कि इसराइल मुल्क के नाम से ऐसी मारूफ है, वरना वो समझ लें फलस्तीन के अंदर एक गुंडा जैसे दहशतगर्द ग्रुप होता है ना, एक गुंडे जैसे किसी इलाके के अंदर होते हैं वो, है ना, ये कोई मुल्क ना कुछ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे मतलब अगर ये पीछे ये ताकतें ना हो तो ये आधे घंटे की भी मार नहीं है सारी चीजें। एक बात ये, दूसरी चीज भी जो आपने पूछी थी कि हाँ ख्वातीन और बच्चों पे क्यों कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। एक तो ये हमारी पॉलिसी है इसको तूल देना, ये खुद मुकावमत की पॉलिसी है कि हमने धड़ 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 करके वो वाला काम नहीं करना, जो एक बड़ी अक्सरियत ऐसे सोच भी रही है और चाहती भी ऐसी है कि ईरान अभी अपने बड़े निचले दर्जे के मिसाइल इस्तेमाल करता है, यानी ईरान की जो असल पावर है उसका 50% भी अभी ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया, उससे भी निचले दर्जे के इस्तेमाल करता है इसराइल ईरान अभी भी। मुकाम मौजम में रहबरी की और ओवरऑल मुकावमत जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, इसकी पॉलिसी यह है कि हमें इसको इसी तरह तदरीजन डिबोना है, गर्क करना है इसी तूफान अक्सा के अंदर, लेकिन तदरीजन करना है। हमें वो काम नहीं करना कि हम मजलूम से जालिम बन जाए, जो ये चाहते हैं, ये इंटरवीन जो करते हैं, ये जो प्रोवोक करते हैं सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के जरिए, या मसलन ईरान के बड़े कमांडर्स की शहादत के जरिए, या इब्राहिम रईसी की शहादत के जरिए से, कि ईरान बड़ा बिल्कुल ऐसे कूद जाए इस जंग के अंदर और पूरा, यानी ये फलस्तीन इसराइल के बजाय ईरान इसराइल हो जाए, ये इनकी पॉलिसी है। हमें इनकी हिकमत अमली के मुताबिक नहीं चलना, हमारा एक अपना पूरा खुद एक रोड मैप है इसको करने का, वो तदरीजी है। उस तदरीजी के अंदर प्रॉक्सीज के थ्रू ही, जो उम्मत इस्लामी के दस्त बाजू हैं उनके थ्रू ही इस काम को स्लो एंड स्लो ही आगे लेके जाना है, वो हमारी एक तदबीर है। हम उनके किसी इवेंट जो वो क्रिएट करते हैं उससे अपनी तदबीर को नहीं रोकेंगे, जो कि तदबीर कामयाब है। इस तदबीर से अगरचे ये अपनी जगह पे लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, खवातीन और बच्चों पे करना खुद बता रहे हैं कि दीवानावार वार कर रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्ला और हमास को निशाना नहीं बना पाते तो अपना गुस्सा खवातीन और बच्चों पे पहुंचाते हैं। इसके जरिए से जो बहुत बड़ा हदफ हासिल हो पाया इनकी इस हिमाकत की वजह से, वो ये कि उमूमी तौर पे बशरियत की और पूरी दुनिया की आंखें इसराइल की जुल्म की तरफ खुल गई। वो सूरत हाल जो पूरी दुनिया के अंदर इसराइल की मना इसराइल के मुखालिफ जो सूरत हाल अब हुई है इन 50,000 शहादतों के बाद, वो एक साल पहले नहीं थी। पूरी दुनिया के अंदर वेव बन जाना, फलस्तीन का कजिया पूरी दुनिया का पहला कजिया बन जाना, मीडिया पे भी और उस पर भी, अगरचे की शहादतें बहुत शदीद है लेकिन इससे जो चीजें हासिल हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर जालिम और मजलूम की ये चीजें हो जाना, वो ऑब्जेक्टिव्स है कि जो फिजा ये नहीं चाहते थे, ये अपने आप को नॉर्मलाइज करना चाहते थे। इसराइल का नॉर्मलाइजेशन के जो इकदाम थे डील ऑफ सेंचुरी, उससे अब 100 साल पीछे चला जाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमास की तूफान अक्सा के नतीजे में, कि ये जो 7 अक्टूबर को ये जो मिसाइल मारे थे, सबसे बड़ा हदफ जो इन मिसाइलों को हासिल हुआ है कि इसने डील ऑफ सेंचुरी पे जाके ये मिसाइल लगे, और इस नतीजे से जो है ना वो बहुत बड़े इनके मंसूबे और जितनी इन्होंने सब कुछ की थी वो सब चकनाचूर हो गए। लेकिन ये शहादतें पूरी दुनिया के जमीर को जो बेदार कर रही है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जहूर के लिए जरूरी है, ये जहूर के लिए ये आलमी बेदारी जरूरी है कि जिसके अंदर हक वाजे हो, हर किसी को पूरी दुनिया ना समझ रही हो ये हक है। आज फलस्तीन के दिफा करने वालों को पूरी दुनिया पहचानती है और पूरी दुनिया को पता है कि ये इतने संजीदा क्यों है, चूंकि ये एक ऐसे इमाम का इंतजार कर रहे हैं जो इमाम पूरी दुनिया में आके अदल इंसाफ कायम करेगा, और उनको पता है कि ये ग्लोबल प्लेयर है एक्चुअली पूरी इसके, तो ये इसलिए इसके ऑब्जेक्टिव वहां पे हासिल हो रहे हैं। अगरचे ये हिमाकतें कर रहे हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को हमें समर के तौर पे मिल रही है, उसका अफसोस अपनी जगह पर है। ये इसके तूलानी होने से जानी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसके तूलानी होने से ही वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो रहे हैं जो जहूर के लिए पेशखैमा बन रहा है।
जज़ाकअल्लाह आगा, थैंक यू सो मच। आपने इतने डिस्क्रिप्टिव स्टाइल से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी और ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे, जो आपने रिसेंटली अभी डिस्कस किया था कि अक्सर लोगों का ये बयान होता है कि अगर ईरान ये सब कुछ कर रहे, लेट्स से वो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे, लबनान को सपोर्ट कर रहे, सीरिया को सपोर्ट कर रहे, तो हमेशा से उसके पोलिटिकल इंटरेस्ट है उन जगहों पे, राइट? और वो
जी
अपने से पॉलिटिकल इंटरेस्ट बचाने के लिए, वो जैसे कहते हैं ना कि अक्सर एक स्टेटमेंट, रिसेंटली अभी ये स्टेटमेंट यूज की गई थी कि ईरान हैज सोल्ड आउट लबनान और फलस्तीन, ठीक है? तो इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे दाखिल करेंगे? लेट्स से अगर कोई भी शख्स आपके सामने आता है जो बिलाल तुफिकी को सपोर्ट नहीं करता, या उसके नजरिए बिलाल तुफिकी एक अच्छा पोलिटिकल नैरेटिव नहीं है, तो आप ऐसे शख्स को कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि अक्सर ये सवाल रेज किया जाता है कि हम लोग भी उस पॉलिटिकल इंटरेस्ट को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करें।
हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारे लिए जरूरी इसलिए भी है कि चूंकि हमें अपने इस हक को बातिल की जो ये तफरीक है, बातिल को बातिल साबित करने के लिए, हक को हक साबित करने के लिए, हर दफा हम कुरान और हदीस और हत्ता रहबर मौजम का या आइमा अथार का या इन फुकाहा का हम सहारा नहीं ले सकते। ओवरऑल हमारे सामने जो पार्टिसिपेंट, हमारे सामने जो मुखातिबीन है वो डिफरेंट है, तो उनको हम ये बताएंगे कि आप ये देखें कि इसराइल ने कितने इंटरनेशनल लॉस तोड़े, और इसके मुकाबले में ईरान ने जब भी दिफा किया है इन ममालिक के अंदर, जिन ममालिक के अंदर ईरान दिफा के लिए जाता है, एक तो उनको मजलूम देखकर जाता है, खुद अपने दिफा की ताकत नहीं रखते, लेकिन उन ममालिक के जो अवाम है उनकी मर्जी से वहां पे जाता है, और वहां की अगर कोई हुकूमत भी है जैसे सीरिया, उनकी इजाजत से बाकायदा परमिशन लेके और एक कानूनी तरीके से वारद होता है ईरान हमेशा, चाहे वो लबनान हो, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो सीरिया हो। हम ये कहते हैं जो ईरान के दुश्मन है सबसे पहले, यही जो हम उनसे तो कहेंगे बशरियत के दुश्मन, पहली पहली ही जो ईंट इन्होंने यहाँ पे रखी वो भी यहाँ के इजाजत से नहीं रखी, अहले फलस्तीन के जो यहाँ पे यहूदियों को लाके बसाया गया, और अब इस गासिब सहूनी मुल्क की सपोर्ट करने के लिए भी, सपोर्ट करने के लिए भी जिन जिन ममालिक के अंदर ये कार्रवाइयां करते हैं, क्या उनसे पूछ कर करते हैं, क्या सीरिया राजी है कि अमरीका वहां पर ये कार्रवाई करे, लबनान राजी है कि अमेरिका की वहां पे कार्रवाई हो, क्या अफगानिस्तान राजी था कि अमेरिका यहाँ पर आए, क्या इराक राजी था कि अमेरिका यहाँ पर आए, उनको फौरन कहेंगे ये इंटरनेशनल लॉस की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, एक और चीज जैसे रहबर मौजम ने कल भी कहा कि ये खुद यूएन की रहबर मौजम ने कहा तीन तरीके से हम हक पर हैं, और कल आप ही की इस सवाल के जवाब में आप देखें कि रहबर मौजम ने कल बहुत अच्छा इशारा किया कि तीन तरीके से हम हक पर हैं, एक तो ये बैन अल-अक़वामी उसकी खिलाफ वर्जी है कि आपने तजावुज किया जो हमारे तहरान के अंदर आके आपने इस्माइल हानिया को मारा, किसी की भी खत्ते के अंदर करें अपनी खाक की अपनी जमीन की का तहफ़ करना उनको हक हासिल है, और ये यूएन की रेजोल्यूशन है, अगर कोई आपकी ब्रीच वो करेगा और तोड़ेगा आपकी जो है वो सरहद को, तो आप भी हक रखते हैं कि आप उसके दिफा के अंदर, उस सरहद के अंदर जाएं। रहबर मौजम ने कहा कि हमने ये जो जवाबी हमला किया है ये उनके जवाब में किया है, और ये यूएन की रेजोल्यूशन है और उसके मुताबिक किया है, ये हमारे सामने। खुद यूएन की रेजोल्यूशन हम उनको बता सकते हैं कि भाई फलस्तीन के बारे में भी अगर जो हम उसको ना मानते और ना ही हमने बनाई है वो रेजोल्यूशन फलस्तीन के बारे में, इसराइल उसके मुताबिक भी टोटल एरिया के 30% से ऊपर नहीं आ सकता, और अभी ये 70% से अबव है कब्जा किए हुए, उस रेजोल्यूशन के अंदर जो 1967 के अंदर है ये उससे भी आगे नहीं जा सकते, जिसको पाकिस्तान बार बार टू स्टेट कहता है, जो कि कायदे आजम की भी उसकी स्टैंड की खिलाफ वर्जी है, अल्लामा इकबाल के साथ भी खयानत है, बानी पाकिस्तान कायद आजम के साथ भी खयानत है, जो हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी और मौजूदा हुकूमत भी हर जगह पे ये बात कहती है टू स्टेट सॉल्यूशन, ये बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान की जबान, ठीक है, टू स्टेट सॉल्यूशन जिसको हम सिरे से तस्लीम ही नहीं करते, उसको एक कमरा दे के तस्लीम करें या पूरा घर दे के तस्लीम करें एक ही बात है, आपके पास पोर्ट पे लिखा हुआ है, आप हम तो सिरे से तस्लीम ही नहीं करते उसको, लेकिन हाँ ये अपने मफादात और अपनी चीजों के लिए ये वाली बातें करते हैं ताकि इनकी हुकूमतें जारी रहे। तो इन लॉस को हम उनके सामने रख सकते हैं, बैन अक्वामी कवानीन के अंदर क्या आप बच्चों के ऊपर और उनके ऊपर जुल्म कर सकते हैं, खवातीन को मार सकते हैं, भाई ये बच्चों और उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं ये माँ बैन अक्वामी कवानीन के ऊपर, तो हम दिफा के अंदर, और फिर रहबर मौजम ने क्या कहा कि हम ये जो काम कर रहे हैं, ये जो हम बिल्कुल कर रहे हैं बल्कि कहकर कर रहे हैं, और हम आगे भी अगर किसी को जरूरत पड़ेगी हम उसका साथ देंगे इसराइल के मुकाबले में, क्योंकि ये हमारे पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है, ना फकत ईरान के लिए, ना फकत ईरान के लिए नुकसान, पूरे वेस्ट एशिया के लिए नुकसानदेह, मगरबी एशिया के लिए नुकसानदेह। ये खुद रहबर मौजम के ही जुमले हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, जब भी रहबर मौजम इंटरनेशनल फोरम के अंदर फॉरन अफेयर की टीम को ब्रीफ करते हैं तो उसके अंदर इन्हीं अनावीन को वो करते हैं कि, और अभी भी जो अफ्रीका ने केस किया हुआ है, अब अफ्रीका तो कोई इस्लामी मुल्क नहीं है जो जीत भी गया है, मुजरिम भी करार दे दिया इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, जो अब नेतन्याहू को 2 दिन पहले अब वो भी करार दे दिया गया है मुजरिम भी, और सजा भी उसकी बता दी गई है, लेकिन हाँ इन लोगों के जो माफिया सिस्टम है जिसकी वजह से उसका एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, जो अभी सूरत हाल बनी हुई है, चूंकि उसके पीछे 4 ताकतें उसको सपोर्ट करेंगी एग्जीक्यूट ना हो, तो अफ्रीका ने जितने भी क्लॉजेस बनाए, अफ्रीका ने ये पूरा जो इंटरनेशनल अदालत के अंदर लेके गई, पूरे 8 महीने ये केस चला है, जो 2-3 दिन पहले उसका एक फाइनल फैसला जो है वो अप्रूव होके भी आ गया इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, तो वो तो सारी चीजें वही साबित कर रही है ये मुजरिम है। हम उनके सामने ये पेश करते हैं जो सेकुलर माइंड के लोग होते हैं कि भाई ईरान क्यों उसके अंदर जाके दखल अंदाजी कर रहा है, कुछ कर रहा है, एक तो ये कि आपने हमारे पूरे रीजन को इफेक्ट किया है, ना कि सिर्फ फलस्तीन को इफेक्ट किया है, पूरे रीजन को आपने इफेक्ट किया है, और हमारा दीन ये तकाजा करते हैं उम्मत मुस्लिमा के उनवान से कि हम उनको उनके घर में काबिज अफराद से उनकी जान छुड़ाएं, ना कि हम जो है। अच्छा फिर दूसरा हम ये भी बार बार कहते हैं कि ईरान अपने बाकी नेबर्स के साथ कैसे है, क्या पाकिस्तान कोई कंप्लेनिंग है, अफगानिस्तान को कोई कंप्लेन है, या चाइना को कोई कंप्लेन है, या ये जो हमारे रीजन के ममालिक है मतलब उनमें किसी को कंप्लेन है ईरान से, क्यों इनको कंप्लेन नहीं है, क्यों उनको कंप्लेन है, फौरन पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ ईरान और उसका नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो रीजन को डिस्टर्ब करेगा, ईरान कह रहे हैं हमने ये जो हमला किया था ये रीजन को सुकून दिलाने के लिए कर रहा है अपने पास, तो हम उसके सामने ये इंटरनेशनल लॉज और वो चीजें जो उनका तोड़ना है उसको हम सामने लेकर आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, जब ये हुआ फलस्तीन का, जब ये मामला कजिया हुआ, तो हमें ये अक्सर ये भी सुनने को मिला कि बाज़ अहले इल्म हज़रात जो है यहाँ पे चंद माह पहले कि फलस्तीन जो है वो तो वहाँ पे वहाबीज़म बहुत है, वहाबियत से लगाओ और वहाबियत वाले लोग, तो अगर ईरान उनके मदद कर रहा है या अहले तशय्यो उनके मददगार हैं तो कल जब वो आज़ाद होते हैं तो वो अहले तशय्यो के ही दुश्मन बनेंगे और वो मतलब उन्हें आंखें दिखाएंगे, और ये इस तरह की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। तो अब हम तो जाहिर है वहां से दूर रहते हैं, हमें उनकी ना तारीख का पता है ना उनके मतलब इस चीज का, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं कि ऐसे हजरात को क्या जवाब देना चाहिए, या हमारा मतलब ऐसे लोगों को खामोश करवाने के लिए क्या हमारे पास जवाब होना चाहिए।
ये अच्छा है, लेकिन उनको हम मिसाल के तौर पर खुद इंकलाब इस्लामी की मिसाल दे सकते हैं कि भाई जब इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, या क्योंकि यहाँ पर भी इनकलाब इस्लामी में भी जो सीस्तान बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पर इस तरह के एलिमेंट्स हैं, तकफीरी एलिमेंट, वहाबी एलिमेंट, नासिबी एलिमेंट ईरान के सीस्तान बलूचिस्तान के अंदर भी हैं। जब इनकलाब इस्लामी आया तो हम वहाँ भी तो ये सवाल उठा सकते थे, हम कहते कि भाई इमाम खुमैनी ये इनकलाब तो लेकर आ रहे हैं पूरे ईरान के अंदर, तो अब एक काम करें सीस्तान बलूचिस्तान को अलग कर दें, चूंकि वही एक इलाका है कि जो थोड़ा सा डेंसिटी जिसके अंदर अहले सुन्नत की ज्यादा है और यहाँ पे शिया डेंसिटी एरिया है, तो वहां पर ये काम नहीं किया गया, और वो काम 45 ईयर्स के बाद भी 15,000 शहीद अहले सुन्नत है इनकलाब इस्लामी। आप देखें अच्छा इसके अंदर वो इतनी माइनॉरिटी के अंदर होने के बावजूद भी उसमें से भी ये जो तकफीरी अंसर था वो बिल्कुल ही 2-3% था। फलस्तीन के अंदर भी मामला ऐसा ही है, वो अफराद, हत्ता वो जो वहाबी एलिमेंट और तकफीरी एलिमेंट था भी अहले सुन्नत का फलस्तीन के अंदर, वो तकरीबन एक तो फरार कर चुके हैं वहां से, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे ये जो एक बड़ा तबका है वो हमास डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो डिसीजन लेगा, जो फैसला कुन ताकत है वो हमास है। और दूसरी एक थी जो तकफीरी नहीं थे, सिर्फ हमास की पॉलिसी के ऊपर जो है ना वो अमल नहीं करते थे, महमूद अब्बास की टीम, इससे पहले जिसके हेड यासिर अराफात थे, अल-फतह पार्टी। ये जो अल-फतह पार्टी थी, ये थी, ये ज्यादातर वेस्ट बैंक की तरफ है, ये जो इलाका वेस्ट बैंक का इलाका है, मगरबी किनारा। हमास जो है वो गजा और इस पट्टी के ऊपर है, गजा वाली पट्टी के ऊपर। तो हमास की उनके जो हेड थे वो यही थे शेख अहमद यासीन, इनकी पॉलिसी, इमाम खुमैनी वाली पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की थी, रेजिस्टेंस की पॉलिसी, और वो जो पॉलिसी थी वो डायलॉग की पॉलिसी थी। तो आप देखें जब ये मुकावमत हुई, सब चीजें हुई, तो वो तकफीरी वाले लोग तो भाग ही गए, वो तो इसका पार्ट ही नहीं बने, क्योंकि उनको पता था कि ये ईरान वाली, वो तो उसको ईरान की पॉलिसी कहते हैं, इस्लाम की हकीकी इस्लाम की पॉलिसी तो नहीं कहते रेजिस्टेंस को, वो तो भाग ही गए, क्योंकि उनको पता है कि जिनके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं इसके पीछे अमेरिका है, और हमारे जो तकफीरी और वहाबी हैं वो तो वहां पे डील किए हुए हैं आले सऊद के साथ, तो हमें तो वैसे भी इनका कोई साथ नहीं देना है, वरना तो हमारे पास जो ये मदरसों के पैसे आ रहे हैं, जो चीजें आ रही है, तो वैसे भी बंद हो जाएंगी। तो एक तो वो तबका भाग गया, जो तबका बच गया है वो बहुत ज्यादा हमास के इस ताकत के इजहार के नतीजे में, जो हमास ने पेशरफ की है, कामयाबियां हासिल की है, उन्होंने अपने नजरिए को तब्दील किया है। इसलिए हत्ता अब फलस्तीन की, हत्ता इस तूफान रक्सा से पहले भी, फलस्तीन की मसाजिद के नमाज जुमा के खुतबे अब वो नहीं होते 2-3 साल से, अब तकरीबन 5 साल से, जो पहले होते थे, अब नहीं है। वो एक बहुत पुरानी बात है, अब फलस्तीन के अंदर ऐसे एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि अब जो भी इस तरह की बात करेगा वो ऑड मैन आउट हो जाता है, क्योंकि फैसला कुन ताकत हमास है, और हमास के अंदर ये शिया सुन्नी ड्रिफ्ट या ये दुश्मनी कीना वो चीज नहीं है हमास के अंदर, क्योंकि इनकी तरबियत इंकलाब इस्लामी के पर गुर्दा अफराद ने की है, हमास की और उनकी पूरी टीम की। और ये इलेक्शन के अंदर भी अल-फतह पार्टी को और उस वाले तबके को बाहर निकाल के आके हमास ही यहाँ की जो है वो अक्सरियती उससे जीती थी, इसलिए वो एलिमेंट अब खत्म हो चुका है, अब वो ऐसा रहा नहीं, बासर नहीं रहा। अच्छा, बाद में अगर होगा तो हमास ने खुद बयान मौजूद हैं, चाहे वो खालिद मिशेल के बयान हो, इस्माइल हानिया के बयान हो, या यही या ये सनवार जो अब हेड है हमास के, इनके बयान हो, वो कभी भी इजाजत नहीं देंगे इसके अंदर, जो इसराइल को इजाजत नहीं दे रहे फलस्तीन की फिजा को खराब करने के लिए, वो कैसे इजाजत देंगे उनको अब इस तरह के अनासर को, जिनको पता है ये बात कि ये सारी हमारी मूवमेंट के पीछे ये शिया आइडियोलॉजी है जो मुकावेमत को सपोर्ट करती है। तो ये कभी भी अब दोबारा उन अनासिर को जो आले सऊद पेड अनासिर थे, जो पाकिस्तान में भी हैं, बहुत मुख्तलिफ जगहों पर भी हैं, जो खुश भी हुए हैं वो अफराद जो वहां पर भी हैं, लेकिन उन वो अब वो नहीं रखते, तासीर नहीं रखते, अब वो अपनी तासीर खो चुके हैं, क्योंकि उनका स्टेंस भी नाकाम हो गया, और मैंने कहा कि ना वो अफराद तो भाग भी गए इसके अंदर, वो इससे पाए इसकी रेजिस्टेंस में शामिल भी नहीं है, वो उनके साथ हैं जो अरब कंट्रीज हैं, वो कोई इजिप्ट चले गए, कोई मिस्र चले गए, कोई यहाँ चले गए, खामोश कंट्रीज के साथ चले गए, गैर जानबदार हो गए फलस्तीन के बारे में, ये वही अनासिर ज्यादातर जिन्होंने अपने घर बेच दिए।
जजाकला। किसा फातिमा का चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि सऊदीया ने क्यों सपोर्ट करना छोड़ दिया है, या अगर इस क्वेश्चन को रीडिफाइन करें तो क्या क्या ऐसी वजह है कि अरब कंट्रीज जो हैं वो अभी भी अवॉइड कर रही हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में आने से, डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से।
मैं बताता, अच्छा आप प्लीज मुझे आगे भी सपोर्ट कीजिएगा, जो रिटर्न में क्वेश्चन अगर टेक्स्ट में आ रहे हैं तो अगर आप मुझे नेक्स्ट ईयर तो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि इब्राहिम रईसी ने स्टार्ट की थी, सदर इब्राहिम रईसी ने, कि सऊदी अरब को डराया गया है ईरान के खिलाफ, कि देखो अगर तुम ईरान के खिलाफ नहीं हुए ना तो तुम्हें जो है ना ईरान खत्म करने के दर पे है, ईरान तुम्हारा दुश्मन है, सफ़े अकबर का दुश्मन है, जबकि रहबर मौजम इनकलाब इस्लामी ने बहुत पैगाम सऊदी अरब को ये दिए थे हिजाज को, कि भाई हम आपके दुश्मन नहीं है, ये एक्चुअली इस खत्ते के अंदर हम दोनों को दुश्मन बनाना अमेरिका की पॉलिसी है। लेकिन बहुत सारी चीजें वहां पे वहाबियत के एलिमेंट की वजह से ईरान की ये बात मानी नहीं जाती थी, और कहते थे नहीं ये एक ट्रैप है, ये धोखा है। लेकिन जब ये यमन के अंदर आके फंसे, और यमन के से बाहर निकालने का वाहिद रास्ता انقلاب اسلامی اور مقام معظم میں رہبری تھے, تو سعودی ڈیلیگیشن نے آ کے کہا تھا کہ بھائی ہم پھنس گئے یہاں کے اندر, آپ ہمارے یہاں سے جان چھڑائیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں تصویب ہوئی تھی, اور باقاعدہ یہ اس پہ جو پیس ٹریٹی ہوئی تھی کہ اب سعودی عرب اور یمن کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوگا, ایران نے گارنٹی دی تھی. تو اس میں جو پیس ٹریٹی ان کی طے ہوئی تھی اس کے باقاعدہ پروسیس لکھے ہوئے, ساری چیزیں لکھی ہوئی, بھائی خطے کے اندر آپ اس خطے کے مقابلے میں کسی طاقت کا ساتھ نہیں دیں گے, چیزیں نہیں کریں گے. تو سعودی عرب نے ایک ملی جھولی پالیسی بنائی تھی کہ بھائی ہم جو ہے نا ثالثی کا کردار سے ادا کریں گے, مطلب نہ ہم آپ کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں. امریکہ کو بھی سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم ایران کے بھی کسی حملے میں شامل نہیں ہوتے, اور ہم اسی طریقے سے اسرائیل کو بھی کوئی سپورٹ نہیں کرتے. لیکن بہرحال خود غیر جانبدار ہونا بھی ایکچولی انہی کی سپورٹ ہو جاتی ہے. جیسے میرے پاس گن ہو اور میں گن نہ چلاؤں, اور میں کہوں کہ اگر دیں گے بھائی فلسطین میں اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوں تو میں نقصان کر رہا ہوں, ابھی صرف یہ معاملہ نہیں ہے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں, نہیں اس وقت آپ کو فلسطین کے ساتھ ہونا ہوگا تو آپ بچیں گے, ورنہ تو یہ وہی کوفی کردار ہے بالکل, کہ نہ ہم یزید کے ساتھ ہیں نہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم کوفہ میں اپنی دکان پہ بیٹھے رہیں گے, ہم اپنی چیزوں کو جاری رکھیں گے. تو ان لوگوں نے یہ والا کردار اپنایا ہوا ہے, لیکن ایران نے اس ورسٹ کردار کی نسبت اس کو پھر بھی اپریشیٹ کیا کہ ایٹ لیسٹ وربلی بھی اگر آپ وہ کرتے ہیں, اور جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ایران کے وزیر خارجہ کی, ان کے وزیر خارجہ کی ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی قطر کے اندر, ایران کے وزیر اعظم بھی وہاں پر ہیں, اور وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوئیں آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ایک بڑا اچھا ڈائلاگ آج ہوا ہے, اسے ڈیولپمنٹ ہوگی آگے جا کے. اور انہوں نے اتنا بھی کیا کہ ایران کے کوئی میزائل اب یہ روکتے نہیں ہیں. تو سعودی عرب میں بہت تیزی سے چینجز آ رہی ہیں, جب سے سعودی عرب نے وہابیت سے جان چھڑائی ہے اپنے نیون سٹی کو بنانے کے لیے, جو ان کا ایک اقتصادی منصوبہ ہے کہ ہم دبئی سے پیچھے رہ گئے اس وہابیت کے چکر میں, اس اسلام سے بھی جان چھڑاؤ, سعودی عرب کو لبرل بناؤ. وہابی سعودی عرب سے لبرل سعودی عرب پھر بھی نسبتاً بہتر ہے, لیکن وہ آئیڈیل سعودی عرب جو ہم اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے, لیکن اس کے لیے پروگرس ہو رہی ہے. اور یہی چیزیں دیکھ کے جو سعودی عرب کی عوام کے پاس, اس عرب جوانوں کے پاس جو چیزیں جا رہی ہیں حزب اللہ کی اور ایران کی اور مقاومت کی اور یمن کی, وہ عرب ورلڈ کی جو افتخارات دیکھ رہے ہیں, بہت جلد بحرین کی طرح وہاں پر بھی چینجز آئیں گے انشاءاللہ.
I guess Adnan ka koi question hai sir, agar aapka question hai aap bol sakte hain.
Ji assalam alaikum aga ji, Lahore se baat kar raha hu, sorry.
aap puche
ji Adnan bhai question kare, no problem.
Acha assalam alaikum aga.
السلام علیکم جی, آپ فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے.
شکریہ اتنے اہم موضوعات پہ بولنے کے لیے, کافی اچھی گفت ہو رہی. اچھا میرا سوال جو ہے شاید ڈائریکٹلی لنک نہ کر سکے آپ کے آج کے موضوع سے, لیکن یہ کہ اس کا تھوڑا سا انڈائریکٹلی وہ لنک کرتا ہے. یہ جو خود مقاومت ہے, ریزسٹنس جو ہے, یہ کسی بھی شخصیت کے اندر یا کسی بھی گروہ کے اندر اس کا سورس کیا ہے, کہاں سے آتی ہے, اور خصوصاً جو ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس عبادتوں کو ہم کیسے لنک کر سکتے ہیں مقاومت کے ساتھ, کیونکہ کبھی کبھار ہمیں خود خوف آتا ہے اپنی عبادتوں سے کہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں لیکن اس سے ہمارے اندر وہ مقاومت جو ہونی چاہیے, جو اس زمانے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جس کے بنا, جیسے کہ آپ نے پیشرو میں بھی کہا کہ اس کے بنا شاید ہماری عبادتیں رائے گاہ جائیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ عبادتوں کا کیا ہم سورس کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ ایک مقاومت کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سورس ہے عبادتیں, چونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑ رہے ہیں بلکہ عبادتیں, کیا جب بندوں سے ہمارے اندر یہ کیا کہتے ہیں یہ شعور پیدا نہیں ہو رہا کہ ہم مقاومت کا ساتھ دے سکیں, تو ان عبادتوں کا کیا فائدہ؟
یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اگر میں آپ سے کہوں نا کہ انقلاب اسلامی کے اندر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے یہ جو چنگاری شروع کی تھی نا بتانے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ تشیع ہے یہ تشیع نہیں ہے, جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ اسلام ہے اسلام نہیں ہے, امام خمینی کا یہ این جملہ ہے, اے علماء اسلام, اے روحانیان, اے علماء, اے مومنین, اور لوگوں کو بولا کہ اسلام گم شدہ ہے, اسلام گم ہو گیا اسے ڈھونڈو. کہاں کہہ رہے تھے امام خمینی یہ بات؟ امام خمینی یہ بات کر رہے تھے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے جوار میں, قوم مقدسہ جو کہ سینٹر ہے تشیع کی علمی بنیادوں کا, وہاں پہ امام خمینی یہ جملہ بول رہے تھے, جہاں پہ کم از کم 10 سے زیادہ مراجع اور مجتہدین کی اتنی تعداد موجود ہے, وہاں امام خمینی کہہ رہے تھے کہ اسلام کو ڈھونڈو اسلام گم ہو گیا. یہ انہی لوگوں سے کہہ رہے تھے جو نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, روزے بھی رکھ رہے تھے, زیارت بھی کر رہے تھے, عزاداری بھی کر رہے تھے, ماتم بھی کر رہے تھے, حدیثیں بھی ہو رہی تھیں, جلوس بھی نکل رہے تھے, علم بھی اٹھا رہے تھے, سب چیزیں کہہ رہے تھے, لیکن امام خمینی کہہ رہے تھے اگر تمہارے اوپر یہ سایہ اس کا ہے نا شاہ کا, تو یہ نہیں ہے اسلام جو تم سمجھ رہے تھے, تم سے اصل چیز سرا جو ہے گم ہو گیا, तुम बिजी हो गए इसके अंदर, ये तो ये सारी चीजें बन जाती हैं रिचुअल्स, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, या अगर हम ये इबादतें भी कर रहे हैं, सारी चीजें साथ में भी चल रही हैं, उसको हम कहते हैं रिचुअलिस्टिक इस्लामिक प्रैक्टिसेस। ये वो नहीं है कि जो मुझे जाके मैदान में खड़ा कर देगी, ये इसे हम कहते हैं नमाज बराए नमाज, इसे हम कह रहे हैं कि रोजा बराए रोजा, एक रमजान के बाद अगले रमजान का इंतजार करना, एक नमाज के बाद जोहर असर के बाद मगरिब इशा का करना। अल्लामा इकबाल ने इतनी जबरदस्त ताबीर की है, यानी हमने अभी इस वक्त ऊपर काम किया था, हमने कहा था कि हम अभी चल रहे हैं दोस्तान इंशाल्लाह इसके ऊपर बुक भी चाह रहे हैं कि इस पर प्रिंट हो, अल्लामा इकबाल और इमाम खुमैनी की आइडियोलॉजी के जो मैच है उनको हम लेकर आए थे, अल्लामा इकबाल, और क्योंकि एक दोस्त चाह रहे थे कि उसके अंदर कुरान को भी ऐड कर लें, कि अल्लामा इकबाल के हर शेर के पीछे या रिवायत या आयत या फिर इमाम खुमैनी की कोई सेइंग आज के जमाने के अंदर हतमन मौजूद है। इस पर काम करने की जरूरत थी कि उलमाए इस्लाम बैठे और अलामा इकबाल के इसको में से निकाले। अलामा इकबाल कहते थे यही बात कि मुल्ला की अजा और है, मुजाहिद की अजा और, ये दोनों अजाने दे रहे हैं लेकिन मुल्ला की अजा और है, मुजाहिद की अजा और। कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसे क्या जाने बेचारा दो रकत का इमाम। बहुत जबरदस्त ताबीर है अल्लामा इकबाल की, इसीलिए रहबर मौजम इनकलाब इस्लामी कहते हैं कि अगर हम 1920 में अल्लामा इकबाल की तरफ ईरानी कौम उलमा और ये मुतवज्जे हो गए होते तो वो इनकलाब जो 1979 में आया है वो 1920 में ईरान में आ चुका होता, और हम देर से मुतवज्जे हुए अल्लामा इकबाल की तरफ, हमारी सारी इनकलाबी आइडियोलॉजी की थ्योरी अल्लामा इकबाल पेश कर रहे थे, लेकिन जिनके सामने पेश कर रहे थे एक्चुअली वो अल्लामा इकबाल से बहुत पीछे थे। उनका बुलूग और बुलूग फिक्री और इल्मी अल्लामा इकबाल की हाइट का नहीं था, वो उसको रिसीव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अल्लामा इकबाल ने फिर अपनी लैंग्वेज चेंज करी और कहा कि ए जवाना ने अजम जाने मनो जाने शुमा, और ये पूरी एक दास्तान है। ये जो चीज हमें बताई जा रही है वो ये है कि हाँ वाकई हर नमाज मैदान में नहीं उतारती जब तक उस नमाज के अंदर ये तीन एलिमेंट ना हो। अभी जो हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, चीजें पढ़ते हैं, हम अभी सिर्फ अहकाम के ऊपर अमल कर रहे हैं, नमाज के अहकाम नमाज को सही पढ़ने के लिए काफी है लेकिन नमाज को कबूल करवाने के लिए काफी नहीं। जिसकी नमाज कबूल होती है वो बनता है मुजाहिद, वो बनता है मुकाविम, वो मुकाविमत की तरफ जाता है, लेकिन जिसकी नमाज सही हो वो सिर्फ इतना है कि नमाज इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अहकाम इस्लामी की डायमेंशन से नमाज ठीक है लेकिन ये गारंटी नहीं करती कि ये नमाज कबूल भी है या नहीं है, क्योंकि खुदावंद मुताल अमल की तौफीक बहुत सारे लोगों को देता है। बहुत सारे लोग सैयद शहदा की ज्यारत पे जा सकते हैं, शोहरत की वजह से भी जा सकते हैं, दौलत की वजह से भी जा सकते हैं, और लोगों की दुकानें हैं इमाम हुसैन के हरम के सामने, वहां पे रहते हैं, कारोबार हैं, चीजें हैं, लेकिन क्या खुदा इस ज्यारत को हर किसी से कबूल भी करता है, नमाज को कबूल भी करता है? ये बहुत बड़ा मुफस्सल टॉपिक है कि अगर कभी दामने वक्त में गुंजाइश हुई और इसको अलग से डील किया गया कि ये क्यों इतनी क्लॉज लगाई गई है कि इन्नमा यतकब्बलो मिनल मुत्तकीन, खुदा बंदे मुताल मुत्तकीन से कबूल करता है चीज़ों को। ये रिवायात के अंदर भी ये मौजू आया, बाद आयात के अंदर भी इसकी तरफ इशारा हुआ कि खुदा कबूल फकत मुत्तकीन से करता है। पढ़ने की तौफीक बहुत सारे लोगों को दे देता है, और आपके सामने आमने सामने आप देखते हैं कि यार ये अजीब सा अजीब नौ खान है, ये हर साल करबला जाता है, और मैं आदमी को देख रहा हूँ कि ये बेचारा जिंदगी में एक दफा भी करबला नहीं जा पा रहा है। ठीक है, और ये मामलात हैं कि खुदाबंद मुताल ये कब होता है, जब अमल की तीन डायमेंशन है। सिर्फ खुलासा कर रहा हूँ, तफसील इंशाल्लाह कभी अगर अलग से इसके लिए हुई तो इस पर बात करेंगे कि अमल की तीन डायमेंशन है, नमाज के अहकाम, नमाज के आदाब और नमाज के असरार। अगर नमाज के अहकाम हमें पता हो जो तौजील मसाइल में लिखे होते हैं, ये सिर्फ सही नमाज पढ़ने के लिए काफी है लेकिन ये नमाज को कबूल करवाने के लिए काफी नहीं है। नमाज को कबूल करवाने के लिए उसके आदाब और असरार ये जरूरी है, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं इसी मजमे में से किसी से पूछूं कि भाई आपने असरार नमाज और असरार रोजा के हवाले से कौन सी किताबें पढ़ी हैं, तो आपको बहुत कम क्वांटिटी मिलेगी कि जिसने ये डायमेंशन भी पूरी। इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने इन तीनों मौजूआत पे किताब लिखी है, उनकी किताब आदाबुस्सलात भी है, उनकी किताब असरारुस्सलात भी है, उनकी किताब अहकामुस्सलात भी है। ये तीन डायमेंशन किसी भी अमल को मुकम्मल करती है, नमाज को भी ऐसी मुकम्मल करती है, चाहे वो आपका बोलना हो, चाहे वो आपका नमाज पढ़ना हो, चाहे वो आपका तालीम हासिल करना हो, उसमें तीनों चीजों का ख्याल रखेंगे तो ये एक मोमिन को मुजाहिद बना देती है। ये जो अफराद हमें मैदान में नजर आते हैं, इवन यमन के अंदर हम देखते हैं पाँव में चप्पलें नहीं है लेकिन अमेरिका के किश्तियों को निशाना बना रहे हैं। और मैं बार बार अभी कराची के कुछ दोस्तों के साथ हम बैठे थे और बात मैं उनसे कर रहा था, तो मैंने उनको बड़ी क्लियर मिसाल दी। मैंने कहा हम जब यूनिवर्सिटी के अंदर होते थे वो जो अल्ताफ हुसैन के मुकाबले में कुछ नहीं बोल सकता था और डरता था, उसको अंदाजा ही नहीं है यमनी क्या कर रहे हैं। मतलब जो आप कराची में रहते थे जब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोलना बस अपनी मौत को दावत देने के काबिल होता था, लेकिन ये आजादारी भी करता था, अलम भी उठाता था, ये भी करता था, वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ नहीं बोल सकता था कराची में, ये समझता था मैं हुसैनी आजादार हूँ, ये मैं वो आजादार हूँ जो इमाम हुसैन चाहते थे ना, जैसा अलमदार आजादार ऐसा। और ये 20 साल से अल्ताफ हुसैन के केक काटने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता था। हाउस मंजर देख रहे थे, उस यूनिवर्सिटी में शिया भी पढ़ रहे हैं, सुन्नी भी पढ़ रहे हैं, आजादार भी पढ़ रहा है, अलमदार भी पढ़ रहा है, लेकिन अल्ताफ हुसैन का केक काटेगा जब उसकी सालगिरह होगी तो ये यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगा। इसको शायद तो मालूम होगा कि यमनी क्या कर रहे हैं, वो अमेरिका के मुकाबले पे आके खड़े हुए हैं। और आप अपने शहर के एक जालिम, एक शराबी, जो सारी खसूसियात उसमें भी सारी वही खसूसियात हैं जो यजीद के अंदर थे, और ये उसके मुकाबले पे आके खड़े हो जाते हैं बगैर चप्पलों के और बगैर उसके के जो काफी अर्थे थे अपने घरों को भी नहीं गए, लेकिन वो अमेरिका की शिप्स को निशाना बना रहे हैं। वो ईमान की ताकत कहाँ से आई, इनकी नमाजों की ये तीन डायमेंशन कंप्लीट हो गई है। हमास का भी यही मामला है, हिजबुल्ला का भी यही मामला है, मुकावमत का भी यही मामला है, हज़्ब शाबी का भी यही मामला है। और ये जो आपको अफराद देखेंगे जो आज सर फहरिस्त हैं वो यही है, इन्होंने मुकम्मल इस्लाम पढ़ा, इन्होंने सिर्फ इबादतें दुरुस्त करने के अहकाम पढ़ के नहीं समझा ये सब कुछ पूरा मुकम्मल हो गया। इमाम खुमैनी ने ये चीज इनकलाब इस्लामी के अंदर उठाई थी कि इमाम खुमैनी ने कहा बगैर असरार के नमाजें भी बेरूह है, बगैर असरार की आजादारी भी बेरूह है, ये आपके आंसू निकाल सकती है, आपके जरिए दुश्मन के आंसू नहीं निकाल सकती है आजादारी, ये आप इससे अपने हाथ सीने पे मार सकते हैं, दुश्मन के मुंह पे तमाशा नहीं बनते ये हाथ। ये जो इमाम खुमैनी ने रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आया, इमाम खुमैनी की टीम तैयार हो गई इनकलाब इस्लामी के लिए, इसमें शहीद मुतहरी हैं, शहीद बहश्ती हैं, रहबर मौजम इनकलाब इस्लामी हैं, शहीद रजाई हैं, शहीद बाहुनर हैं, मुस्तफ़ा चमरान हैं, ये इनको ये दीन पढ़ाया गया। ये अगर हम एहतमाम करें, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि अब हौज़े मकुम में यहाँ से रहते हुए आप अपने घरों के अंदर एहतमाम करते हैं, हमने सबको ये बात कही हुई है, जहां पर भी 10 अफराद भी जमा होंगे हम उनको हफ्ता वार ये जो इनकलाब इस्लामी की आइडियोलॉजी है प्योर मोहम्मद इस्लाम, हम उनको हफ्ता वार उनकी खिदमत के अंदर हाजिर है, हफ्ते में एक दिन आपकी खिदमत में हाजिर है, लेकिन इसका एक मरतबा इस्लाम का क्विक रिव्यू और जस्ट 3 मंथ्स के अंदर हमने इसको रखा हुआ है कि मैक्सिमम 3 मंथ्स, मिनिमम 2 मंथ्स के अंदर, जस्ट 8 to 9 sessions के अंदर एक मरतबा हम भी ये इनकलाबी इस्लाम एक दफा इसका खुलासा पढ़ें कि भाई इसमें और उसमें क्या फर्क है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम खौफ में आ जाते हैं, हमें एकदम से अपने बच्चों का ख्याल आना शुरू हो जाता है, हमें ये होता है कि अगले साल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या चीजें होंगी, लेकिन ये लोग लगे हुए, ये लोग लगे हुए जैसे इनको सब पता है कि हमने नहीं ख्याल रखना, खुदा ने रखना है, हमने बस जो मुकदमात हम फराहम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इनका ईमान क्यों कभी है, उस आइडियोलॉजी की वजह से जिसका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, कलिमतन तैयबतन या कुरान मजीद की इस तरह है, इससे वो दरख्त निकलता है जो इनकलाब इस्लामी है, उस दरख्त की शाख का शजरतन तैयबतन, और फिर उसकी जो शाख है इस दरख्त की असलोहा साबितन, जिसकी जड़ें इसी मजबूत आइडियोलॉजी के अंदर मजबूत हैं, और फसलोहा फिस समा, और उसकी जो शाखें हैं वो फिर आसमान तक जाती हैं, यानी वो उसकी पुश्त पे खुदा है, आसमान तक जाती हैं क्योंकि उसको पता है मेरी ताकत के पीछे खुदा है, वो हत्ता अपनी ताकत का राज इनकलाब इस्लामी की आइडियोलॉजी को करार देता है, इस फिक्र को करार देता है ताकत का राज, जो ये बता रहे हैं हसन नसरुल्ला के वली फकीह की पैरवी में सारी कामयाबी है, ये आइडियोलॉजी उसकी ताकत का सारा राज है।
आगे जाने चैट में। जी जी जी
जी आगा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, आप देखें सीएनएन बीबीसी, ये बहुत ज्यादा बायस है, जो इसराइल के फेवर की अमेरिका के फेवर की बात होती है, डेफिनेटली उनका मीडिया है तो उन्हीं का नजरिया दिखाता है, वन साइड
आवाज
दिखाता है। आवाज सही आ रही है आगा?
जी जी क्लियर आ रही है बिल्कुल।
जी, ये देखें, एक तरफ की यानी कि खबर दिखा रहे हैं, बेसिकली वो प्रोपोगेंडा कर रहे होते हैं, जो दिखाना
ऑब्वियसली
चाह रहे होते हैं, लोगों का माइंड बनाना चाह रहे होते हैं, उस तरह कर रहे होते हैं। अगर जी हम लोग अभी तक उसको ओवरकम नहीं कर सके, और बहुत सदियों से बात चल रही है, तो क्या तरीका है इसको ग्रेजुअली ओवरकम करने का?
मैंने
तो
मैं
सोशल
हर चीज का
मीडिया
रूट कॉज में यही बता रहा हूँ, जो आज का हमारा ये था भी कि हम जो डाइसेक्ट कर रहे हैं चीजों को देख रहे हैं, जो हमने कहा कि भाई आजादार होना काफी था, लेकिन मैं जो पाकिस्तान से जो फोन कॉल्स मैंने रिसीव किए, जो मैसेजेस मैंने देखे, और जो मैंने उनकी हालत देखी, मसलन मैं आराम से यहाँ शॉपिंग कर रहा था और वो कह रहे थे हम परेशान है, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, अब क्या हो जाएगा, अब चीजें हो जाएंगी। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप, मैं उनको हरम की वीडियोस दिखा रहा हूँ, यहाँ की सड़कें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग मुतमईन है। अच्छा, वो जो आप एंड सोच भी रहे हो, हम उसी के लिए तैयार हैं, हम यहाँ आए उसी के लिए हैं, या हम उसी के लिए हम इतने आमादा हैं क्योंकि हम दावत दे रहे हैं इस आइडियोलॉजी से, उसी माहौल को, जिस माहौल से आप खौफ में क्यों है, इत्मीनान क्यों हासिल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। अगर हम इर्द गिर्द में किसी को इस हालत में देख रहे हैं, उसको बचाने का सिर्फ रास्ता ये है कि अपनी आइडियोलॉजी को दोबारा से रिव्यू करें। ये चीजें मेरे दिल में खौफ और हुज्न नहीं लानी चाहिए। हाँ, गम एक ठीक है, बिल्कुल अजा गम, ये बिल्कुल नॉर्मल है, फितरत के मुताबिक है, लेकिन मायूसी और खौफ अगर आ रहा है, देखिए हर शख्स खुद जानता है, मैं ऐसे नहीं कर सकता मैं ऊपर से कुछ बनूं अंदर से कुछ हूं, हर शख्स अपना तो एनालिसिस कर सकता है। ही और शी हैज टू रिवाइज हिज आइडियोलॉजिकल बेसिस एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ प्योर मोहम्मदन इस्लाम। अब भी वक्त है कि हम दोबारा से चीजों को रिव्यू करें। ये जो मैंने अकायद पढ़े, ये मुझे बेखौफ क्यों नहीं कर सका, ये जो मैंने अहकाम पढ़े, ये मुझे कौन सा दीन मेंबर से सिखाया गया, मदरसे ने पढ़ाया या मौलवी साहब ने आके घर में पढ़ाया या मुझे मेहराब से मिला, ये कौन सा दीन है? और ये जो कल नमाज जुमा के अंदर हो रहा था तेहरान के अंदर, ये कौन सा दीन है कि मुकाम मौजम रहबरी से कह रहे हैं कि भाई कम अज कम मस्जिद के तो अंदर पढ़ ले नमाज, मुकाम मौजम रहबरी कह रहे हैं नहीं मुझे बाहर पढ़नी है नमाज, सब लोग बाहर जमा होंगे, ये इज्तिमा बाहर होगा जेर आसमान। ये क्या ताकत है, ये क्या बात है, ये क्या ईमान है? और मुकाम मौजम रहबरी नमाज के वो मुस्तहबात उसके अंदर बजा ला रहे हैं जो इंसान कहते हैं भाई जब जंग की हालत के अंदर नमाज हो रही है तो उसमें तो आप कुछ चीजों को स्किप भी कर सकते थे, सूरह जुमा की जगह आप कोई और सूरह पढ़ लेते, छोटी सूरह पढ़ लेते, आप वही जो मुस्तहब है सूरह जुमा पढ़ना वाजिब नहीं है, आप सूरह कुल अल्लाह पढ़ लेते कलाम, या थोड़ा सा आप कहते कि नहीं आज असर की नमाज नहीं पढ़ाते, चल नमाज जुमा को है असर तो लोग फरादे भी पढ़ सकते हैं, नमाज जुमा का जमात के साथ वाजिब है, कोई और नमाज असर पढ़ा देता नहीं, असर नमाज असर भी पढ़ाई, या रहबर एक मुस्तहब के रहबर बड़ा तफसील से सजदगा से तबरुक लेते हैं नमाज के बाद, तो हम देख रहे थे कि रहबर ने उसी तफसील से लिया जो मैं तकरीबन पिछले 10 साल से रहबर मौजम को देख रहा हूँ नमाज में, कि रहबर मौजम उसी से पूरे लिबास के ऊपर हाथों के ऊपर अपना चश्मा उतार के आराम से इत्मीनान से जंग की हालत के अंदर, जंग की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इमाम जमाना के बाद, वो इतनी इत्मीनान से नमाज पढ़ रही है, ये कौन सा दीन है भाई? आई हैव टू रिवाइज माई आइडियोलॉजी। तो इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो बात कर रहा हूँ कि हमें दोबारा से देखनी पड़ेगी, हर शख्स खुद देखे मैं पढ़ सकता हूँ ऐसे नमाज, मैं ऐसे कर सकता हूँ। और जो मैंने आपको मिसाल दी कि जो कराची की मैंने दोस्तों से मिसाल दी, ताकि आप तो थोड़ा सा करीब से देखें इन चीजों को आके, या हम तैयार हैं उस माहौल के लिए जो अभी ये अगर हिमाकत करते हैं कि भाई जवाब देंगे हम इस हमले का, तो यहाँ पे हम तैयार हैं इन चीजों के लिए, और हम खुश हैं अपने बीवी बच्चों के साथ तैयार हैं, और खुदा का शुक्र है मुकाम मौजम में रहबरी और इमाम खुमैनी की आइडियोलॉजी में हमने जो दीन हासिल किया है, इसका सबसे बड़ा शरफ, यानी यहाँ का हर जवान ये कह रहे हैं कि मेरे लिए बहुत इफ्तिखार की बात है कि मैं सहूनियों से मुकाबला करते हुए, यहूदियों से मुकाबला करते हुए मेरी जान जाए, मैं शहीद हूँ, और लाइन लगी हुई इन चीजों के ऊपर, क्या कहते हैं कि जो भाई हम पहले चले जाए, हम ये चीज हो रहे हैं, बीवी बच्चे भी तैयार हैं, लोग भी तैयार हैं, लेकिन मुझे फोन कॉल्स आ रही है, अंदाजा हो रहा है कि इन्होंने दीन कहाँ से हासिल किया है, क्या सोर्सेस थी, क्या बताया गया है, क्या तस्वीर इनके जहन पे इन सब चीजों के लिए, और आज की करबला में कहाँ खड़े हुए। और कोई सवाल किसी का है तो अगर कोई चैट वाले सवालात प्लीज मेरे लिए बहुत इसमें वो हो जाएगी मदद, कि अगर वो
जी चैट भाई चैट वाले प्लीज अपडेट करें
जी। चैट में एक सवाल आया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो खुद तो ऑब्वियसली फलस्तीन के साथ नहीं देना चाहती, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 7 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट खुद मिल के आपके साथ एक एहतजाज करेगी, तो ये क्यों किया है उन्होंने?
देखिए पब्लिक प्रेशर की वजह से हुआ है ये जो ये आप देखें कि कभी भी योमुल कुद्स को मैंने आपसे कहा जमात इस्लामी नहीं बनाती थी, योमुल कुद्स बनाते थे शिया जवान बनाते थे, ज्यादातर मैंने देखा आईएसओ के दोस्त जो है वो इसके अंदर फाल होते थे, आगे जाते थे मेजबान बनते थे एमडब्ल्यूएम के आईएसओ के मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान के अंदर, और साथ में शिया उलमा काउंसिल के भी असगरिया ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटीरियर से जाना हुआ, इन जवानों को देखा ये लोग हलचल मचाते थे। लेकिन उमूमी तौर पर जो मैंने आपसे कहा एक बहुत बड़ा तशैयों का तबका इससे बेखबर रहता था, आता भी नहीं था, जबकि समझता था ये हमारा वो नहीं है, यानी इसको कहते थे शायद ये कोई ईरानी इवेंट है। ठीक है, अब वो मामला यहाँ तक पहुंचा है कि जमात इस्लामी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम पूरा 7 दिन जो है वो कुद्स के हवाले से बनाएंगे, तूफानुल अक्सा की और फलस्तीन के हवाले से बनाएंगे। और ये बनाने के बाद भी जब टेलीफोन कॉल आना शुरू हुई जिन अफराद से हमने सुना, एमडब्ल्यूएम के दोस्तों से, आईएसओ के दोस्तों से, या लाहौर के अंदर उर्वतुल वस्का के पास दोस्तों से जब हमने सुना, या खुद जमात इस्लामी के पास मसलिन ने बताया कि हमारे पास कॉल्स आएंगे कि भाई ये माहौल आप यहाँ ना बनाए, क्योंकि हमारे आईएमएफ की अभी पहली किस्त का कंफर्म हुआ है और बाकी अभी 7 किस्तें में टोटल चीजें आ रही है, तो ये उसी के अंदर गर्क है, इसी वजह से ये नहीं चाह रहे। लेकिन जब इन्होंने अवामी प्रेशर देखा ना इस दफा कि जमात इस्लामी ने कहा कि हम इसी को बिजली के उसमें भी तब्दील कर देंगे, तो वो शुरू करेंगे हम लोगों को फलस्तीन के उसके ऊपर निकालेंगे, और एक हमारा स्टैंड है कि इन्होंने बिजली के मामले में हमें धोखा दिया, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर इनकी मीटिंग हुई चीजें की। तो इस पे इन्होंने ये सोचा कि अगर ये हमारे खिलाफ निकले तो ये तूफानुल अक्सा के नाम पे निकलेंगे तो पूरी पाकिस्तानी कौम, लेकिन बाद में ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ये सिर्फ इन्होंने अपने ऊपर से वो हटाने के लिए कि देखें हो ही नहीं सकता इतनी बड़ी तादाद को हम पुलिस के लिए खत्म कर दें, कराची में इन्होंने कोशिश की बहुत सारी चीजों के अंदर, इसलिए इन्होंने कोशिश की इसको नॉर्मलाइज कर दो, इसको रस्मी कर दो, ऑफिशियल कर दो, ताकि एक साथ ही सब आए अपनी भड़ास उतार के चले जाए। ये हमेशा से इनकी टैक्टिक होती है, ये तब भी करते थे ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जब नबी अकरम की उसके लिए तौहीन होती थी, जबकि आपका फरीजा अनाउंसमेंट करना नहीं है, जमात इस्लामी का फरीजा है, बाकी लोगों का है, चीजों का है, मतलब तो फौज भी ये करे मैं एहतजाज करूंगा, भाई फौज का काम एहतजाज करना नहीं है, ये कोई आपके ऊपर ना दे, हुकूमत का काम एहतजाज करना नहीं था, हुकूमत का काम ये था अपना अपना स्टैंड तब्दील करें, आप जो ये कह रहे हैं कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन है, हम ये बात करेंगे उनसे, ये आपसे तवक्को नहीं थी कि आप वो काम करेंगे जो अवाम का काम था, एहतजाज का अनाउंसमेंट करना एक अवाम का काम था, आपने सिर्फ उनको इजाजत देते थे काफी था, आप तब भी खाइन है चूंकि आप अपने दर्जे का काम नहीं कर रहे। अगर पुलिस या फौज जो उनकी कैपेसिटी है, आपको अपनी कैपेसिटी में इसराइल के खिलाफ होना है, ना कि अवाम की कैपेसिटी में इसराइल के खिलाफ होना है, ये आम अवाम को भी बसीरत दें। इमाम देखिए मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूँ, इमाम खमेनी इन जगहों के ऊपर बोलते थे, जब इमाम खमेनी ने रेवोल्यूशन की मूवमेंट स्टार्ट की थी, शाह ने कहा मैं मदरसों के अंदर कारपेट भिजवाऊंगा, तमाम उलमा को अबा कबा और चीजें जो है ना वो चीजें होंगी, और ना मदारिस के अंदर भी ना कारपेट भिजवाया जाए, इनके यहाँ कूलर लगा दो, उनको फला दे दो, उनके यहाँ शेल्टर लगा दो, शाह फैसिलिटीज, ताकि ये लोग इमाम खुमैनी की मूवमेंट का पार्ट ना बने। तो इमाम खुमैनी कहते थे भाई मैंने तहरीक मैंने शुरू की है, इनकलाब की मूवमेंट मैंने स्टार्ट की है, और तुम अपनी सारी चीजें बांट रहे हो दूसरों को, तो मुझसे भी तो पूछो मेरा क्या मुतालबा है। और उलमा मुतालबे करते थे कि आप हमारे मदरसे में ये लगा दें, हमारी बिजली मुफ्त कर दें, फला ये करते हैं वो करते हैं। तो इमाम खुमैनी कहते थे मेरा मुतालबा ये कि तुम अपना ये मनुस जो वजूद है ना ये लेके ईरान से चले जाओ, इमाम खुमैनी ये कह रहे थे। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों की ये देखिए यहाँ पे जरूरत है जिहाद तबईन की, यानी कि लोगों को बताएं कि भाई इनको कोई फलस्तीन का हामी ना समझना, ये गैर जानबदार हैं, अगर ये फलस्तीन के हामी इनको बोल्ड होकर स्टेप लेना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर अमरीकी मफादात के खिलाफ आपने क्या किया है, इसके तमाम चीजों के पीछे उतना ही इसराइल जितना मुजरिम है अमरीका भी उतना मुजरिम है, तो सिफारत खाने हुकूमत को खत्म करने चाहिए, ये हुकूमत का एहतजाज होता है, सफीर को वापस भेजना चाहिए आपको बर्तानिया के, अमरीका के, जर्मनी के, फ्रांस के, आपके दर्जे का काम यह था। अब इसका पोस्टर बने, पोस्टर बना के बताए आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं जबकि हाकिम की जिम्मेदारी ये होती है, ये चीजें पता चले, आपका काम ये नहीं है हमें चावल की बोरियां भेजना और चीजें करना, आप हुकूमती सतह की बात करें, आप इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने इस्लामाबाद के अंदर, जो काम आपको कश्मीर के लिए करना चाहिए था लेकिन चूंकि नहीं किया और वो बिक गया पूरा उन्हीं की तरफ जाके, चूंकि आप कर कश्मीर के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं थे, अल्फाज कुर्बान करते थे, लेकिन हाँ मोदी जान कुर्बान करता था वहां पे, इंडियन फौज फौज ने शहादतें दी है कश्मीर के लिए, इंडियन फौज ने मैदानों के अंदर आए अपने उसके अंदर एहतजाज की कॉल नहीं दी इंडियन फौजों ने कश्मीर के लिए, आज कश्मीर उन्हीं के पास है जिन्होंने कुर्बानियां दी कश्मीर के लिए। लेकिन आपने बातें की हैं, तो इनसे ये नकाब उतरना चाहिए, कहीं ये लोगों को अपना हामी बनाने के लिए, फिलहाल 7 अक्टूबर तो गुजरे, बाद में हम दोबारा से यही कर देंगे कि यहाँ पे कोई ज्यादा फलस्तीन की बातें ना हो, तो ये एक पूरी टैक्टिक है।
बहुत खूब आगा, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन है फातिमा अमजद की तरफ से। फातिमा गो अहेड प्लीज।
वालेकुम। आई वांटेड टू आस्क के हाउ इज ज़हूर ऑफ इमाम लाइक एसोसिएटेड विद द फ्रीडम ऑफ पैलेस्टाइन, मतलब दोनों का क्या ताल्लुक है?
ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ जहूर इन द करंट सिचुएशन। आप ये देखें कि द जहूर की बेदारी के लिए, चूंकि जहूर आलमी है, चंद ममालिक के लिए या किसी फिरके के लिए उसके लिए नहीं है, जहूर एक ग्लोबल चेंज के लिए है। तो तीन चार साइंस ऐसे हैं जो बड़े क्लियर साइन हैं, जो जहूर की आखिर जमान की अलामत में से भी हैं। एक जहानी बेदारी इंसानी सतह के ऊपर होना, जैसे अरबईन है जहूर की क्लियर निशानियों में से, अरबईन का वो कि एक ग्लोबल अवेकनिंग मूवमेंट है। इसी तरह फलस्तीन एक ग्लोबल अवेकनिंग मूवमेंट है जो इंसानियत को हक और बातिल के अंदर तकसीम कर रही है, ठीक है, और इससे पूरी इंसानियत इसकी तरफ मुतवज्जे भी हो रही है, इसको इशू भी बनाए हुए है, और ये उसमें पूरे ग्लोबल मीडिया के ऊपर भी मतरा है और ये प्रेजेंट हो रहा है। एक ये दूसरी चीज, इसके अंदर एक यूनिटी है जो कि जहूर के लिए बड़ी जरूरी थी, वो वाली यूनिटी जो इस्लाम के अंदर यूनिटी होती है, कि आप देखें कि अहले सुन्नत एक जाहिरी तौर पे अहले सुन्नत खित्ते के लिए तशय्यो की इतनी कीमती जानें कुर्बान हो रही हैं, सैयद हसन नसरुल्लाह गजा की राह में कुर्बान हो जाना, एक अहले सुन्नत की जान बचाने के लिए शिया का जान दे देना, ये बहुत बड़ी अलामत है जहूर की। या इसी तरीके से इस्माइल हानिया की शहादत अहले तशय्यो, मकतब तशय्यो के मरकज के अंदर इस्माइल हानिया की शहादत का होना, कि आप देखें कि उसका सारा हमो गम उसके चक्कर सारे तशय्यो के रहबर के पास, तशय्यो के मरकज के पास, तशय्यो के लीडर के पास वहां पे लग रहा है। फलस्तीनी मुसलमानों का और उमूमी तौर पे मुसलमानों का रुख मुकाम मौजम रहबरी की तरफ होना, शिया आइडियोलॉजी के एक प्योर अलमदार की तरफ होना, कि इनसे उम्मीद है हमें कि ये कुछ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी अलामत है। अहले सुन्नत वर्ल्ड उन अफराद की तरफ जा रहे हैं जो जहूर के कायल है, जो कि मेहदी मौऊद के कायल है, मौलूद के कायल है, कि जो पैदा हो चुके हैं, उनकी तवज्जो उनकी तरफ होना, ये बहुत बड़ी अलामत है। हम देख रहे हैं कि अहले सुन्नत के जो दिल तशय्यो के अभी नजदीक है, ये जहूर के लिए जरूरी है। इमाम जमाना जितना शिया के लिए जहूर कर रहे हैं, उतना ही अहले सुन्नत के लिए भी जहूर कर रहे हैं। बल्कि मैं हमेशा से अर्ज करता हूँ कि अहले सुन्नत इमाम जमाना के लिए उस बीमार बच्चे की तरह है जिससे माँ को सालिम बच्चे की नस्बत ज्यादा मोहब्बत होती है। जब तक ये बुखार में है, जब तक ये तकलीफ में है, तो माँ कहती है ठीक है, अगर मैं रोज नहीं भी सोती बच्चों के साथ, तो आज ये बीमार है, आज मैं इसके साथ सोऊंगी, आज मैं रातों में इसके साथ जागूंगी, आज मैं इसका ज्यादा ख्याल रखूंगी, दूसरे बच्चों को भी समझा रही हूँ बेटा इसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। तो इमाम जमाना अहले सुन्नत के लिए उनका दिल ऐसे ही धड़कता है, बल्कि ज्यादा धड़कता है, जो कि उनको करीब करने के लिए लेकर आना है। लेकिन हाँ, इमाम जमाना के मकतबी उन फर्जंदों की जिम्मेदारी है कि इमाम जमाना के जहूर के लिए इस बहुत बड़े अक्सरियती तबके को मुसलमानों के लेकर आए इस आइडियोलॉजी की तरफ, और फलस्तीन के कजिए में ये काम हो रहा है, वो बेदार हो रहे हैं, समझ रहे हैं, आ रहे हैं। अगरचे उनमें से बाज उलामा इस तरह का बात कर रहे हैं, शर कर रहे हैं कि भाई ये शिया करने के लिए है या फला करने के लिए, ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अब उसका टाइम गुजर चुका है, मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो आइडियोलॉजी पीछे रह चुकी है, और ये फ्रंट लाइन से आके उसको डील कर रहे हैं। और जिस तरह से अहले सुन्नत की एक बहुत बड़ी अल जजीरा का लाइव दिखाना, रहबर मौजम के जुमे के खुतबे को और चीजें दिखाना, और जो सुन्नी वर्ल्ड के अंदर ये खुतबा जुमा सुना गया, हमें पता है इमाम जमाना के बनाए हुए नाइब के गिर्द मुसलमानों के दिल मरकूज होना, ये खुद जहूर के लिए बहुत बड़ी एलिमेंट है। और चूंकि यरूशलेम का इसका खित्ते का तस्करा भी आर्मागेडन का जो हमारा नजरिया है, पूरा आर्मागेडन नहाई जंग और आखिरी जंग हक व बातिल के लिए एक फैसला कुन जंग यरूशलेम के अंदर होनी है, और वही आज मरकज बन गया है इस तमाम तनाज़ात का और तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स का, तो ये खुद बहुत बड़ी निशानी है। रहबर मौज़म इनकलाब इस्लामी फरमाते हैं कि فلسطین کے اندر بیت المقدس اور اہل فلسطین کی آزادی ظہور کی چابیوں میں سے ہے, اس کے رازوں میں سے ایک ہے. یہ رب الموزن کا بہت کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے اس بارے میں, تو یہ ہمیں بالکل کلیئر کرتا ہے کہ معاملات اب بہت قریب ہیں, اب بہت چیزیں, میں نے کہا اس لیے ہمارے پاس ٹائم کم ہے, چیزوں کو بہت تیزی کے ساتھ ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو ٹریک کے اوپر لے کے آنا پڑے گا اگر ہم ادھر ادھر سے کہیں سے بھی ڈی ٹریک ہو رہے ہیں.
اگین تھینک یو سو مچ آگا, ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے, اگر کسی کا کوئی کوئسچن تھا تو وہ ہم سے نیکسٹ ٹائم شیئر کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعتوں کا, اور انشاءاللہ کہ خدا بند مطال تمام ہمارے مقاومت کے مجاہدین کے لیے بھی, علماء کے لیے, بالخصوص ہمارے مراجع کے لیے, آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ, محرم معظم رہبری حافظ اللہ, ان سب کو صحت و سلامتی اور قوت و طاقت عطا کرے, اور مجاہدین کو تمام کفار کے لشکر کے مقابلے عنایت کریں انشاءاللہ, اور ہمیں بھی وہ زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عنایت کریں اپنے خطے میں, اپنے ارد گرد میں, کہ جو ہمارے زمانے کی ظہور میں تاجیل کا باعث بنے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللہ آمین, جزاک اللہ
آمین.
اللہ حافظ.